إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون میرے دینی بھائیو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جہاں زندگی مقدر کی ہے وہیں اس کے لیے موت کا بھی ہمیشہ کا ابدی فیصلہ ہے ایک ایسا فیصلہ جس میں تبدیلی نہیں ہونے والی ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اللہ رب العالمین نے جس انسان کو زندگی دی ہے اس انسان کے لیے موت بھی مقدر ہے کسی کے لیے 60 سال کی عمر ہے کسی کے لیے اس سے کم ہے کسی کے لیے اس سے زیادہ ہے کوئی پیدا ہونے کے کچھ لمحات بعد ہی مر جاتا ہے اور کوئی ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے یہ اکیلا اللہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اے نبی آپ اس ذات پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آنے والی ہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ جو بھی ہے اس کے لیے اللہ نے موت مقدر کی ہے چاہے بڑی سے بڑی شخصیت ہو دنیا میں ایک مدت تک اس کو رہنا ہے اس کے بعد دنیا سے جانا ہے لیکن صرف زندگی اور موت کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک آدمی پیدا ہو گیا اور اس کے بعد مر گیا بلکہ اس کے بیچ میں ایک جو مدت انسان کو ملتی ہے یہ جو مدت ہے اس میں انسان پر مختلف قسم کے حالات آتے جاتے رہتے ہیں اللہ نے انسان کو جذبات دیے ہیں اس کو عقل و فہم دیا ہے وہ سوچتا سمجھتا ہے وہ محسوس کرتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے اس کو غم ہوتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے اس کو غصہ ہوتا ہے اس طرح کے جذبات انسان کے دل میں تھوڑی تھوڑی دیر میں آتے جاتے رہتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی پتھر کا نہیں بنایا ہے بلکہ وہ ایک حیات زندہ انسان ہے وہ بت نہیں ہے کوئی آدمی اس کے ساتھ کوئی سلوک کرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے اس کو کانٹا پاؤں میں چپتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو اپنی چاہت ملتی ہے اس کو خوشی ہوتی ہے اس کو آئندہ کے لیے فکر ہوتی ہے اس کو پچھلی چیزوں کے کھونے کا غم ہوتا ہے انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جذبات والی مخلوق ہے اس کے دل میں جذبات ہیں اور ان جذبات کی ایک لمبی لسٹ ایک لمبی فہرست ہے محبت نفرت دشمنی رضا یقین شک خوشی غم درد فکر کیا نہیں ہے ایک ایسی مخلوق ہے اس کا دل ایک ہے لیکن اس کے جذبات انیک ہیں ایک دل ہے لیکن اس ایک دل میں کئی جذبات بھرے ہوئے ہیں تھوڑی دیر میں ایک اپنے بچے کو دیکھے گا تو خوش ہوگا اس سے محبت کے جذبات ہمدردی کے جذبات آئیں گے پھر اس کی نگاہ اپنے دشمن پر پڑے تو نفرت کے جذبات بھی آ جاتے ہیں پھر اگر کیلنڈر پہ نگاہ پڑے تو مہینہ ختم ہونے کو آ رہا ہے تنخواہ نہیں آئی اب تک فکر بھی آتی ہے پھر اللہ سے امید بھی ہوتی ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل بھی ہوتا ہے ایک کے بعد ایک آدمی کا دل مختلف جذبات سے لبریز ہوتا ہے ایک کے بعد ایک جذبات دل میں آتے رہتے ہیں دنیا کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے آدمی پیدا ہوا اس کے بعد میں مر گیا لیکن پیدائش سے لے کر موت تک کی جو مدت ہے اس میں ایک کے بعد ایک اس پر امتحانات آنے والے ہیں ایک کے بعد ایک انسان پر جذبات اور حالات آتے جاتے ہیں انسان ایک آدمی جو دنیا میں پیدا ہوا ہے یہاں پر اس پر اچھے اور برے راحت اور تکلیف کے حالات آتے جاتے رہیں گے وہ اپنے آپ کو کسی اور دنیا میں بسانے کا خواب تو دیکھ سکتا ہے لیکن واقعی ایسی دنیا دنیا میں موجود نہیں ہے جو دنیا ہم کو ملی ہے وہ ایسی دنیا ہے जिसमें मसाइल और हल दोनों मौजूद हैं। एक इंसान को तकलीफें भी आएंगी और राहतें भी आएंगी, खुशी के हालात भी आएंगे, गम के हालात भी आएंगे। जो दिल चाहता है वैसा होता चला जाएगा, कभी जो दिल नहीं चाहता है वही होना शुरू हो जाएगा। कभी राहत, कभी तकलीफ, कभी मुसीबत, कभी परेशानियां, कभी मसाइल, कभी वसाइल, कभी हल, कभी तंगी, कभी वसअत, एक के बाद एक आदमी पर हालात आते जाएंगे, ये उसका इम्तिहान है। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को हमने, हर जानदार कुल्लु नफ्सिन जो पैदा हुआ है उसको मौत का मजा चखना है। वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और हम तुमको आजमाते रहते हैं शर और खैर के जरिए से इम्तहान के तौर पर। कभी तकलीफ के हालात, मुसीबतें, कभी राहत के हालात, एक के बाद एक हम तुम पर ये हालात डालते चले जाएंगे और तुमको आजमाएंगे, ये इम्तहान होता रहेगा। फिर वह इलैना तुरजाउन, और पलट के तुमको हमारी तरफ ही आना है। एक के बाद एक हालात आते चले जाएंगे और इन हालात के बाद पलट के तुमको हमारे पास आना है। तो जिंदगी मसाइल से पुर है, चाहे आदमी अमीर हो, गरीब हो, चाहे सेहतमंद हो या बीमार हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो दुनिया का सबसे बदकार इंसान हो, चाहे वो दुनिया का सबसे मुत्तकी इंसान हो, वो अपने आप को दुनिया में मसाइल से बचा नहीं सकता है। नबी को भी दुनिया में परेशानी आने वाली है। ऐसी जिंदगी एकदम जैसा दिल चाहता है वैसी जिंदगी दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। अगर दुनिया में होता तो आदमी जन्नत की तमन्ना ही नहीं करता, बोलते जब यहां मिल रहा है तो वहां के लिए क्या करना है, ये नकद है वो तो लेट मिलने वाला है, तो यहां जब सब मिल रहा है तो वहां क्यों। अल्लाह ने यहां सब नहीं रखा है, यहां इम्तहान और तकलीफ है ताकि यहां की राहत से आदमी जन्नत की राहत को समझने की कोशिश करे और यहां की तकलीफ से आदमी जहन्नम की तकलीफ को समझने की कोशिश करे। उसको राहत और तकलीफ दोनों का टेस्ट यहां पर कराया जाता है, और असल आखिरत में है। असल राहत भी आखिरत में है, असल तकलीफ भी आखिरत में है। लिहाजा एक आदमी को चाहिए कि वो अपनी असल हैसियत को दुनिया में समझे कि मैं यहां इम्तहान के लिए हूं। फिर अगर वो ये समझ ले कि मैं इम्तिहान के लिए यहां पर हूं तो वो मेंटली मसाइल के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए वो प्रिपेयर हो जाता है। कोई आदमी अगर ये जानता ही नहीं हो कि दुनिया की हैसियत क्या है, यहां मेरी पोजीशन क्या है, फिर मसाइल आते चले जाते हैं और वो आदमी धीरे धीरे इन मसाइल में घिर के परेशान हो जाता है। कोई आदमी मसाइल की वजह से खुदकुशी कर लेता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने किया जब रिसेशन आया, क्या किया, बेबी बच्चों को दवाएं खिलाई, मार डाला, उसके बाद खुद फांसी लेके मर गए या बिल्डिंग से कूद के मर गए। क्यों? उम्मीद नहीं है, हिम्मत नहीं है, उनके पास प्रॉब्लम फेस करने की ताकत नहीं है, उनके पास फ्यूचर के लिए होप नहीं है। जब आदमी का होप खत्म हो जाता है तो वो रोप इस्तेमाल करता है कि नहीं, कोई होप नहीं है, घर में सिर्फ एक रोप है, लगाओ, लटकाओ, फांसी लेके मर जाओ, रस्सी, रोप यानी रस्सी। तो आदमी को उम्मीद होना चाहिए, दुनिया में मसाइल हैं, आदमी हिम्मत से काम ले। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इंसान की पोजीशन दुनिया में बता दी, हर जानदार एक दिन मरने वाला है, लेकिन जब तक जिंदगी है तब तक मसाइल हैं, जब तक जिंदगी है तब तक मसाइल हैं। लकद खलकनल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुसीबत और तकलीफ ही में पैदा किया है, मुजाहदे और स्ट्रगल ही में पैदा किया है, उसको जिंदगी भर लड़ते रहना है। बच्चा बड़ा, छोटा बड़ा, सब, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, सबको दुनिया में स्ट्रगल करना है, फाइट करना है। वो ऐसी एकदम जिंदगी चाहे जिसमें मस्त एकदम फोश रहे, अपनी मौज मस्ती में रहे, ऐसी जिंदगी दुनिया में मिलने वाली नहीं है। लिहाजा मेंटली एक आदमी को इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए, जहनी तौर पर आदमी अपने आप को इस पर आमादा कर ले कि जिंदगी ऐसी है, उससे निपटना आसान हो जाता है। जब आदमी अपना जहन बना लेता है तो फिर उसके लिए आने वाले मसाइल से निपटने की ताकत बन जाती है। अचानक जब मामला उसके साथ पेश आने लगते हैं, उसका जहन नहीं बना होता है तो वो टूट जाता है। तो जिंदगी में मसाइल हैं, लेकिन ईमान है, अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह पर यकीन, आखिरत की उम्मीद, दुनिया में अल्लाह की नुसरत का यकीन, ये वो चीजें हैं जो इन मसाइल में एक आदमी को जमाती है। हमको मैदान छोड़ के भागना नहीं है, हमको अल्लाह ने यहां डाला है, ये हमारा इम्तिहान हो रहा है कि कितना टिकाऊ है, جتنا مضبوط یہ آدمی رہے گا اتنا آخرت میں اس کو اعلیٰ مقام ملے گا، جتنا یہ اعلیٰ درجے کا یہاں پر کامیاب ثابت ہوگا اتنی اعلیٰ درجے کی جنت اس کو ملے گی۔ نہ صرف یہ کہ جنت ملے گی بلکہ اس کی زندگی بھی سکون والی زندگی ہوگی۔ دیکھیں باہر پریشانی انسان کے ہیں لیکن اندر سے اگر واقعی وہ اطمینان والا ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کا ذہن پختہ ہے، تو مسائل میں رہ کر بھی وہ مسائل سے نمٹ سکتا ہے۔ کسی بھی سماج میں لوگ ایسے ہی آدمی کو اپنا ذمہ دار بناتے ہیں جو مسائل میں بھی ٹکا ہوا رہے۔ جو آدمی ہمت ہار جاتا ہے، جو آدمی امیدیں چھوڑ دیتا ہے، جو آدمی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، جو آدمی ٹوٹ جاتا ہے، ایسے آدمی کو لوگوں کی رہبری کا مقام نہیں ملتا ہے۔ چاہے وہ رہبری گھر کی حد تک ہو، گھر کا لیڈر، گھر کا بڑا آدمی، وہی پریشانی کچھ بھی آیا ایک دم ڈھزل گیا، بیٹھ گیا، اب بولے کیا کرنے کا، اب میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کرنے کا، ایسے آدمی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا انسان کو بننا چاہیے کہ مسائل میں وہ ٹکا ہوا رہے، ٹکا ہوا ہونا چاہیے انسان۔ یہ مضبوطی کہاں سے آئے گی، ایسا کب بنے گا آدمی؟ اسلام اس میں ہم کو رہبری دیتا ہے، نہ صرف قولی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ ہر قسم کے پرابلمز آپ کو آئے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ٹک کے جم کے بتایا، فیوچر کے لیے ہسٹوریکل ایویڈنس چھوڑا کہ ایک انسان اکیلا ایسا ایک کام شروع کرتا ہے جو ایسے علاقے میں کہ لوگ اس کی جان کے دشمن ہیں، سب سے زیادہ جاہلیت اور جہالت والا معاشرہ ہے، ہر قسم کی برائی اس معاشرے میں ہے، ہر قسم کے دشمن اس میں ہیں، لیکن پھر بھی اس میں ٹک کے ان کو انسان بناتا ہے اور وہ انسان اتنی کم مدت میں غلبہ پا کر اس پورے معاشرے کو اچھے معاشرے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس انسان کو اتنی تکلیفیں آتی ہیں کہ اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ آپ مکہ میں دعوت دے رہے ہیں، آپ کے سر پر مٹی ڈالنا، آپ کو دھکے دینا، آپ کے قتل کرنے کی فکر کرنا، آپ کے لیے پلاننگز کرنا، تانے دینا، آپ کا جینا دوبھر کر دینا، آپ کو وہاں پہ رہنے تک کے ناممکن کر دینا، پھر آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے نکلے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد پھر مشرکین، آپ کے مخالفین یہود نصارہ، تینوں مل کے آپ کے خلاف، پھر ایک منافقین، چاروں مل کے اسلام کے خلاف ظاہری یعنی باہر سے بھی اور اندر سے بھی سازشیں، مخالفتیں، ایک کے بعد ایک جنگوں کا سلسلہ، پھر فقر و فاقہ، پریشانیاں، مسلمانوں کے مسائل، گھر کے مسائل، بیویوں کے مسائل، بچے کی وفات، بچیوں کی طلاق، اور کیا نہیں۔ سفروں میں پھر رات کی عبادت، اللہ سے دعائیں مانگنا، افراد کی تعلیم، لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے، پھر یہاں جنگ ہوئی وہاں جاؤ، پھر یہاں یہ مسئلہ ہے بیمار پرسی کے لیے وہاں جاؤ، لوگوں کو بٹھا، ان کو عقیدہ سکھاؤ، مسائل سکھاؤ، ان کو عبادت سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، لوگوں کو قریب کرو، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بادشاہوں کو خط لکھو، کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ بتائیے ایک انسان کتنی ساری ڈیوٹیز، کتنے سارے مسائل، لیکن کبھی آپ کو کسی ایک واقعے میں، کسی ایک روایت میں ایسا دکھائی دے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم فرسٹریٹ ہو گئے؟ کبھی نہیں ملے گا۔ ایک دم بیلنسڈ، ایک دم چٹان، ایک پہاڑ کی طرح کھڑی ہوئی شخصیت، یہ ہے اسلامک پرسنالٹی، یہ ہے انسان، وہ انسان جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت آئی اللہ کے دین سے، اللہ کی رہبری سے، اللہ کی توفیق اور نصرت سے۔ آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی رات میں جبریل آ کے جب دبوچے تھے تو آپ آگے کیا کہہ رہے تھے اپنی بیوی سے؟ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری موت نہ ہو جائے، اتنا زور سے مجھ کو بھیجا جاتا ہے۔ آپ سوچیں وہی انسان جب اللہ تعالیٰ نے دین دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق دی اور آپ کے دل کو منور کیا، آپ انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے پختگی کا اور ثابت قدمی کا نمونہ ہے۔ اسلام انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ جس انسان کے پاس آئیڈیلز نہ ہو، جس انسان کے پاس پرنسپلز نہ ہو، جس انسان کے پاس زندگی کا مقصد نہ ہو، جس انسان کے پاس ہوپ نہ ہو، جو اپنے سے اوپر کسی مضبوط طاقت کو جو کبھی کمزور نہیں ہوتی ہے نہیں جانتا ہو، ایسا آدمی ٹوٹ جاتا ہے۔ جس کے پاس ہمت اور امید نہ ہو وہ آدمی پھسل جاتا ہے، وہ آدمی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم نہ ٹوٹیں، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اللہ نے کیا فرمایا, ولا تهنوا, ہمت مت ہارو, ہمت مت ہارو, ولا تحزنوا, اور غم مت کرو, غم مت کرو, انتم الاعلون, تم ہی غالب رہو گے, تم ہی, تمہارے لیے ہی اونچائی ہے, تمہارے لیے ہی غلبہ ہے, لیکن ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو تو. غلبہ ایمان کے ساتھ مربوط ہے, ایمان ویسا ہونا چاہیے, اللہ ویسا غلبہ بھی دے گا. سارا معاملہ اور مدار کہاں ٹکا ہوا ہے؟ یہاں. ایمان اگر ہمارا صحیح ہے, سوچ ہماری صحیح ہے, یقین اور توکل اور امید اور اللہ سے تعلق اگر ویسا ہمارا ہے, ہماری سوچ اگر اتنی اعلیٰ ہے, تو یقیناً اللہ تعالی کی مدد اور غلبہ ایمان والوں کے ساتھ میں ہے. یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ قرآن سنت سے ملے گا. کیسا جینا دنیا میں, کیسے جینا, مسائل آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, آپ کو پوچھ کے آئیں گے, آپ کے مہمان آپ کو فون کر کے آتے ہیں, مسائل آپ کو فون کر کے ایس ایم ایس کر کے نہیں آئیں گے, میں آ رہا ہوں, اچانک آئیں گے. اور اچانک کیسے آئیں گے؟ دروازے سے بھی آئیں گے, کھڑکیوں سے بھی آئیں گے, اور اگر آپ بند کر دو تو چھت پھاڑ کے بھی آئیں گے. آپ نہیں جانتے مسائل کہاں سے آئیں گے, کیسے آئیں گے. ایک انسان کو بعض اوقات کئی مسائل آ گھیرتے ہیں, اس میں وہ ان سے نپٹ نہیں پاتا ہے. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کوئی آدمی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, کوئی آدمی ڈیل نہیں کر پاتا زندگی کے پرابلمس کو, تو جھوم برابر جھوم شرابی, شراب پی کے اپنے آپ کو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے, وہ سٹینڈ بائی موڈ میں چلا جاتا ہے, اپنے آپ کو کسی طرح سے وہ بھاگتا ہے. کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایک دم اس کو بیماریاں ہوتی, ذرا سے آواز آئی تو گھبرا جاتا, ایسا بھی ہو جاتا آدمی. کوئی آدمی کسی نہ کسی بیماری میں, کسی کو ہارٹ کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے, کسی کو کچھ اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں, کوئی آدمی سیدھا ایگزٹ دنیا سے ہی چھوڑ, بھاگو یہاں سے, یہاں نہیں رہنا مجھ کو. کسی کے قرضے بڑھ گئے, کسی کا کچھ مسئلہ ہے, کچھ بچیاں ہیں پھانسی لگا کے مر جاتی ہیں, چار چار بچیاں ہیں, اب کیا کریں گے؟ ماں باپ کچھ بھی الٹا سیدھا کر دیتے ہیں, بچوں کو مار ڈالتے ہیں, کیا نہیں ہوتا ہے. دنیا میں ایک انسان مسائل کو اس کو فیس نہیں کر پاتا ہے, اس لیے ایسا انسان کچھ نہ کچھ غلط کرتا ہے, یا پھر اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز میں مبتلا کر دیتا ہے, جوئے میں, شراب میں, ڈرگز میں, یا کوئی آدمی بہت غصے میں آ کے لوگوں کو ہی مارنا شروع کرتا ہے, کسی کا قتل کر دیا, کسی کو ستایا, وہ آدمی کبھی اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے, کبھی وہ اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے. تو ہم کو دنیا میں مسائل سے جوجھنے کا طریقہ آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ مسائل کے بغیر دنیا کا تصور نہیں کر سکتے. وہ صرف جنت ہے, لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ, وہاں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے, وہاں ان کی چاہت کے مطابق سب ہے. کہاں؟ وہاں, یہاں نہیں, یہاں نہیں ہے. یہاں جو نہیں چاہتے وہ بھی آنے والا ہے, جو چاہتے وہ نہیں بھی ملنے والا ہے. یہ دنیا ایسی ہے, اس میں کیسے رہنا اور اپنے غم فکر کا کیسے حل کرنا, سٹریس, ٹینشن. آج کل سٹریس کی بیماری ایک دم عام ہے, کسی کو بھی آپ پوچھیں گے بہت ایسیڈیٹی ہو رہی, کیوں؟ تو ڈاکٹر کیا بولتا ہے, ہری کری انوری, تین چیزیں بولتا ہے, اس کا خیال رکھو سب صحیح ہوتا ہے. ہری جلدی, گائے گڑبڑ, ایک دم جلد بازی دنیا میں, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, بھاگو بھاگو دوڑو دوڑو بیمار. کری سالن, الٹا سیدھا کھانا, اور یہ پوسٹ باکس, اس میں پورا دنیا بھر کے خط آ رہے ہیں, چیک نہیں کر رہا کیا ہے. تو پیٹ خراب, وری, فکریں, اور فکر کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے صحت پر, آدمی کی صحت خراب ہو جاتی. کئی لوگ ہیں آپ دیکھیں گے ان کو, آپ ملے ایک زمانے کے بعد ملے آپ, ایک دم خراب ہو گیا, آپ پوچھتے کیا ہوا, اور ٹینشن ہے میرا, یہ ہو گیا گھر میرا روڈ وائڈنگ میں چلا گیا, میری دکان روڈ وائڈنگ میں چلی گئی, میرا یہ ایسا ہو گیا, فلاں چیز ایسا نقصان ہو گیا, اور دواخانے میں فلاں تھا اس کا اتنا ایسا ہو گیا, میرے پورا حالت خراب ہو گئی, ایک دم ایسا ہو گیا آدمی, اچھا خاصا ہٹا کٹا ایک دم آدمی بیمار دکھائی دیتا ہے. کیوں؟ بہت زیادہ فکر اس نے لے لیا, بہت زیادہ ٹینشن اس کو ہو گیا. کسی کو دیکھیں گے بچہ پیدا ہوا مر گیا, وفات ہو گئی, اس کے بعد غم میں جو آدمی پڑا رہتا ہے اس کی زندگی پوری خراب ہو جاتی ہے, بزنس خراب ہو جاتا ہے, گھر کے تعلقات خراب ہوتے, سب گھر میں چپ چاپ بیٹھتے ہیں, خوشیاں جو تھیں سب ختم ہو جاتی, جوان بچہ چلا گیا. فکر اور غم یہ انسان کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں. آپ کو اس کے باوجود جینا سیکھنا ہے, आप बोलेंगे फिक्र निकल जाए, गम निकल जाए, सब दुनिया में ऐसे हालात पैदा ही नहीं हो और मैं एकदम खुशी खुशी दुनिया में चलूं। ये आपका ऐसा ऐसी तमन्ना है कि दुनिया में कोई गाड़ी ना हो और सिर्फ मेरी ही गाड़ी चलती रहे, पूरे रास्ते एकदम साफ हो, ना भैंसा बीच में आए, ना बकरी बीच में आए, ना कोई ट्रैफिक सिग्नल हो, ना कोई गाड़ी अचानक बीच में आ जाए। हो सकता है ऐसा? नहीं। कोई भी ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? ऐसा ही है यहाँ पे, अचानक कोई भी गाड़ी बीच में आ सकती, अचानक कोई भी बैल आ सकता है सींग वाला, वो भी अचानक कुछ भी हो सकता है, अचानक कोई गड़ा आ सकता है। मुझको बिल्कुल गाड़ी इसके समझ कर सोच कर ऐसा है मान के चलना पड़ेगा। कभी ट्रैफिक जाम होगा, कभी कुछ और होगा, कभी बारिश आएगी, कभी टायर पंक्चर होगा, कुछ भी होगा, आपको इसके बावजूद गाड़ी चलाना है। आप आइडियल सिचुएशन की तमन्ना कर सकते हो, हासिल नहीं कर सकते, उसको हासिल कर सकते नहीं। लिहाजा एक आदमी को अपने आप को मेंटली इसके लिए प्रिपेयर कर देना चाहिए, ज़हनी तौर पर अपने आप को वो मान ले कि दुनिया ऐसी है। जब आदमी मान लेता है कि ऐसा यहां है तो उसके लिए आसानी हो जाती है, फिर वो आगे सही ढंग से चलना शुरू कर देता है। ये बहुत बड़ा मौजू है कि दुनिया में फिक्र और गम का इस्लाम में क्या इलाज, या इससे कैसे डील करना इस्लाम ने हमको कैसे सिखाया है। आइए आज के दर्स में हम इसी के सिलसिले में कुछ बातें सरसरी तौर पर देखते हैं। नंबर एक, दुनिया में दोनों हालात मोमिन हो या काफिर हो, खुशी और गम की राहत और तकलीफ के आने वाले हैं, लेकिन मोमिन इन दोनों हालात में अपनी दुनिया भी सही कर लेता है और अपनी आखिरत भी बना लेता है। दुनिया असल नहीं है, ये खत्म होगी चाहे आप हंसे या रोएं। दिन आपका दिन भर होता रहा तो घड़ी रुक जाती, और दिन भर हंसता रहा तो फास्ट चलती नहीं, आपका टाइम सेम चलने वाला है। दुनिया में जितने भी अमीर गरीब पैदा होते हैं, सब आपको 24 घंटे मिलते बराबर है। आप चाहे आप खुशी से गुजारें चाहे गम से गुजारें, टाइम आपके लिए रुकने वाला नहीं, आपकी घड़ी बराबर टिक 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 चलती रहेगी। बच्चे खेल रहे खुशी से, बाप टेंशन में, बीवी बर्तन धो रही, सबका टाइम बराबर जा रहा है, लेकिन सिचुएशन सबके अलग अलग है। टाइम सबका इक्वल है, लेकिन उस टाइम को कौन कैसे गुजारता है उसकी चॉइस है, उसकी अपनी पसंद है, वो जैसा चाहे गुजारे उसको। हालात सब पर आएंगे, जिंदगी मिलेगी, खत्म भी हो जाएगी। हमसे पहले कितने चले गए, हम उनके नाम भी भूल गए, कौन रहे वो फुला, अच्छा अच्छा याद आया, अच्छा वो आप भूल गए, उसके साथ रोज चाय पीते थे आप, लेकिन वो गया, वो भूल गया उसको। आप भी आज हो कल चले जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस जिंदगी में सिर्फ इस जिंदगी को बनाना नहीं, उस जिंदगी को भी बनाना है। वो कैसे बना सकते हैं? इस जिंदगी में खुशी और गम, राहत तकलीफ दोनों में आप सही तौर से जिए, वो करें जो आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दो चीजें आपको करना चाहिए। खुशी और राहत के हालात में अल्लाह का शुक्र, तकलीफ और गम और परेशानी के हालात में सब्र, शिकायत नहीं। जब आदमी ऐसा करता है तो ये चीजें तो एक के बाद एक निकलती चली जाती है, जैसे रात आई दिन आया होता है ऐसा। लेकिन इन हालात में जब आदमी अच्छे काम करता है, खुशी में अल्लाह का शुक्र करता है और गम में सब्र करता है, अल्लाह ताला इसके लिए सवाब लिखता चला जाता है, यहां तक कि आखिरत में उसको फिर हमेशा की खुशी मिलती है। अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आजब अल अमर अल मोमिन इन अमरहु कुल्लहु खैर। मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। कौन कह रहा है ये? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। आजब अल अमर अल मोमिन इन अमरहु कुल्लहु खैर, उसका तो हर मामला अच्छा होता है, उसका तो हर ही मामला अच्छा होता है। मोमिन सब चीज अच्छा अच्छा ही करता है, उसके हर मामले में, हर सिचुएशन में उसके लिए भलाई निकल आती है, वो उसमें से भलाई निकालता है। कैसे? वलैस ज़ाक लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन। आप फरमाते हैं और ये चीज सिर्फ मोमिन को नसीब होती है कि उसके हर मामले में उसके लिए खैर का पहलू निकले। क्या फरमाते हैं? इन असाबतु सर्राउ शकर फकान खैरन लह। जब उस पर खुशी के हालात आते हैं तो वो अल्लाह का शुक्र करता है, और ये शुक्र करना उसके लिए अच्छा ही होता है। वह इन असाबत हो दर्रा उस सबर फकान खैर अल्लाह। और जब उस पर तकलीफ के हालात आते हैं, मुसीबत और परेशानी के हालात आते हैं, सब्र करता है, और ये सब्र करना उसके लिए अच्छा ही होता है। तो मालूम ये हुआ कि मोमिन के लिए अच्छाई किस चीज में है? जब खुशी के हालात आए तो आदमी नाचने कूदने लगे? नहीं। खुशी के हालात में सबको थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। किया किसने ये? असल नहीं दिख रहा इसका मतलब नहीं किया ऐसा है क्या? करने वाला अल्लाह है, दिखता नहीं है। अल्लाह दिखाई नहीं देता लेकिन करता है अल्लाह, असल वो करता है। इसलिए किसी ने क्या कहा है, शिफा अल्लाह देता है और फीस डॉक्टर लेता है। बेचारा मेहनत करता, कोई डॉक्टर होगा तो नाराज होगा, ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप, इतना हम सब करते ना। लेकिन वाकई शिफा कौन देता है? अल्लाह देता है। तो मोमिन ही जानता है कि देने वाला अल्लाह है। दिखाई तो दे रहा है कि आसमान से पानी बरसा तो आसमान ने दिया, लेकिन आसमान से ऊपर कौन है? अल्लाह, वो नहीं दिखाई देता है। तो अल्लाह है जो मसाइल को हल करता है। तो जब मोमिन पर अच्छे हालात आते हैं वो शुक्र करता है, फौरन उसका दिल अल्लाह की तरफ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, अल्लाह हम तेरे लिए तूने मसले को हल किया। फिर कभी तकलीफ भी आती है तो नहीं बोलता क्या अल्लाह ऐसा नहीं करता ऐसा। हमारी कौम कैसी है, जरा सा कुछ तकलीफ आई तो फौरन अल्लाह की शिकायत करने लगते हैं, क्या अल्लाह हमको क्यों तकलीफ दे रहा है, इतने गैर मुस्लिम जो कुफर में पड़े हुए हैं वो खा रहे पी रहे कूद रहे और हम लोग मुसीबत में। तो ये समझता है कि अल्लाह उसको नौज बिल्लाह सजा दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। मोमिन ये जानता है कि अल्लाह ने अगर मुझको तकलीफ में डाला है तो कुछ इसमें खैर होगी, वो सब्र करता है, वो शिकायत नहीं करता है। आप फरमाते हैं जब उस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है और ये उसके लिए अच्छा होता है। क्यों? इसलिए कि शुक्र करने पर नेमत बढ़ती है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह ने फरमाया तुम शुक्र करोगे हम नेमत बढ़ाएंगे। और जब सब्र करता है अल्लाह उसके साथ हो जाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह उसके साथ हो जाता है सब्र में। शिकायत में अल्लाह उसका साथ नहीं तो ठीक नहीं तो नहीं, क्या अल्लाह तो ठीक है कुछ नहीं, हाँ अल्लाह है आज नहीं तो कल। तो फिर बोलता है अल्लाह मेरा बंदा मेरे से उम्मीद रखता है आज नहीं तो कल, वो अभी तक उम्मीद छोड़ा नहीं तो कल नहीं आज। अल्लाह कल का आज कर सकता है और आज का अब कर सकता है, नहीं कर सकता। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए क्या किया, आग में डाला, लोगों ने कितनी मेहनत से आग जलाए, कितना उनको खर्चाया होगा उसका। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया ठंडी हो, कुल ना या ना रुकूनी बरदन व सलाम अला इब्राहिम, ए आग अब तू ही ठंडी हो जा और सलामती के साथ ठंडी हो जा। किसके लिए? स्पेशल केस इब्राहिम के लिए। कभी किसी के लिए हुई ऐसी? अल्लाह चाहे तो किसी के लिए भी हो सकती है। चाहत अल्लाह की, कायदा अल्लाह बदल सकता है कायनात का किसी बंदे के लिए, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ही की कायनात में चलती है। मोमिन का ये ईमान होना चाहिए। मुसीबत है, मूसा अलैहि सलाम पहुंचे किनारे पे दरिया के, कौम पीछे बोली अभी क्या पकड़े गए ना हम लोग, इन्ना ला मुद्रकून। मूसा अलैहि सलाम कह रहे नहीं कल्ला, इन्ना मअ रब्बी सयहदीन, नहीं 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 मेरा रब मेरे साथ है, अभी वो रास्ता बताएगा मुझको क्या करना है। अल्लाह ने रास्ता बताया, मारो ऐसा अपना दरिया पे निकलो, वही रास्ता फिरौन पीछे से अच्छा रास्ता बना अपने लिए, आओ तुम भी आओ। मूसा अलैहि सलाम निकल गए फिरौन उनकी आगे इनकी नीचे गाड़ी। तो अल्लाह जिसकी गाड़ी जिधर चाहे ले जा सकता है, अल्लाह की मर्जी है। तो मोमिन को मालूम होता है अच्छा ठीक कोई नहीं, बात नहीं, ऐसी सिचुएशन है ना, अल्लाह ने अगर गड़े में डाला है अल्लाह ही निकालेगा, ये यकीन होना चाहिए, अल्लाह से शिकायत नहीं। मोमिन ऐसा होता है। तो ऐसा जब उसका दिल होता है तो ऐसे दिल को अल्लाह ताला ईमान से और यकीन से और ज्यादा भर देता है, उसको सुकून से भर देता है। जो आदमी अपने दिल को अल्लाह से जोड़े रखता है अल्लाह ताला उसको मायूस होने नहीं देता है, अल्लाह ताला उसको हमेशा मजबूत रखता है और उम्मीद वाला रखता है। लिहाजा ये चीज याद रखना जरूरी है। अब आइए, बहुत कम है हमारे पास, आइए देखते हैं 10 पॉइंट मेरे सामने और उसके बाद 7 और हैं। क्या असबाब हैं जिनकी वजह से फिक्र, गम, टेंशन, परेशानी और फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें पैदा होती, क्यों होता है ऐसा, क्या क्या है? कई असबाब है जिनमें से 10 में बयान कर रहा हूं। नंबर 1, दुनिया की परेशानियां और नाकामियां। ये बिजनेस में पैसे डाला, वो पैसे लेके भाग गया जिसके पास इन्वेस्ट किया था, फुला जगह दुकान बनाया, रोड वाइडिंग में चली गई, फुला चीज कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं लेकिन काम होता नहीं, कस्टमर आता है बैठता पूरी बात करता है, बोलता ठीक है कल वापस मिलेंगे, उसके बाद फोन भी नहीं उठाता और दिखता भी नहीं, घर पे गए तो दरवाजा भी नहीं खुलता। आदमी एक के बाद एक नाकामी, परेशानी, मुसीबतें इंसान को तोड़ देती है। आदमी एक वक्त तक के सोचता है आज नहीं तो कल, उसके बाद जब कल बहुत सारे हो जाते हैं तो बोलता चल नहीं होता, नहीं होता, उम्मीद छोड़ देता है, फिर वो उसके लिए गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और गम और सब इस तरह से दिल उसका एकदम खराब हो जाता है, दुनिया से दिल उड़ जाता है, फिर नमाज पढ़ने को भी दिल नहीं होता। क्या फायदा बोलता है आदमी नमाज पढ़ के, कई लोग ऐसा करते हैं। जब आदमी को दुनिया में मुसीबत आती है तो आदमी अल्लाह से नाराज होना शुरू करता है, गोया कि वो समझता है कि मेरा हक है अल्लाह पे, अल्लाह पे कोई हक नहीं हमारा। अगर अल्लाह हमारी मदद ना करे तो क्या हमने अल्लाह को कुछ दिया है कि अल्लाह हमारी मदद करे? अल्लाह की मर्जी करे ना करे, लेकिन एक आदमी अपना हक अल्लाह पर समझने लगता है कि अल्लाह ने तो करना चाहिए, लेकिन अल्लाह का जो हक इस पर है क्या वो अदा कर रहा है? अल्लाह ने जिसको करने के लिए कहा वो करता है नहीं, लेकिन अल्लाह से हक बराबर जाता था, अल्लाह ने तो करना चाहिए ना, हमारा अल्लाह है, तू अल्लाह का है क्या? अल्लाह तेरा है ठीक है, तू अल्लाह का हुआ नहीं और अल्लाह को अपना बनाना चाहता है, कितना समझदार है तू। अल्लाह का हुए बगैर अल्लाह को अपना कैसे बना सकता है? तो दुनिया की मुसीबतें आदमी को परेशान कर देती है, उसमें कैसे आदमी को डील करना चाहिए? नंबर एक, एक आदमी को चाहिए कि सबसे पहले मुसीबत आती है, परेशान आदमी होता है, ये थोड़ा समझ में आता है। कुछ लोग मुसीबत के आने से पहले ही परेशान होते हैं, कैसा? अगर ऐसा हुआ तो, कभी ऐसा हुआ तो, अगर ये डील मैंने किया हूं और अगर कस्टमर ने बोला नहीं मुझको डील कैंसिल, तो रात में करवट पे, ये करवट पे भी वही ख्याल, ये करवट पे भी वही ख्याल, अनिल हराम परेशान, दवाखाने में कोई अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई तो ये जो चीज है कि मुसीबत के आने से पहले ख्याली मुसीबत ख्यालों में मुसीबत पैदा कर लेती है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। मोमिन को चाहिए कि जब तक के कोई मसला वाकई पैदा नहीं हुआ है उसके बारे में टेंशन लेना नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिकुल्लि शैइन हकीका, हर चीज की एक हकीकत होती है। वमा बलगा अब्दुन हकीकतल ईमान हत्ता यअलमा अन्नमा असाबहु लम यकुल लियुख्तिअहु वमा अख्तअहु लम यकुल लियुसीबहु। इमाम अहमद और अत्तबरानी ने इसको रिवायत किया और जामे सगीर में शेख अलबानी ने इसको सेल जामे में सही कहा है। आप फरमाते हैं हर चीज की एक हकीकत होती है और एक बंदा ईमान की हकीकत, ईमान की असल को नहीं पा सकता है, उसकी वाकई गहराई को और उसकी हकीकत को नहीं पा सकता है, ईमान के मग़्ज को नहीं पा सकता है जब तक के वो इस बात को अच्छी तरह से न समझ ले, अच्छी तरह से इस बात को न जान ले, अच्छी तरह से इस बात पर यकीन न करे कि जो चीज उसको पहुंची है, जो उसको मिला है राहत या मुसीबत, वो चूकने वाला नहीं था और जो नई आई मुसीबत वो पहुंचने वाली नहीं थी। जब तक कि उसका जहन ये ना हो पहुंचने वाली होगी मुसीबत तो पहुंचेगी, नहीं पहुंचने वाली होगी तो नहीं पहुंचेगी, जब तक कि ये जहन नहीं बनाए वाकई उसका ईमान कामिल नहीं होता है। हम अगर मिसाल के तौर पर एक आदमी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कभी मुश्किल सवाल पूछे तो और जवाब नहीं आया तो और जबान लड़खड़ाई तो अब ये लड़खड़ाना यकीन हो गया है, वो अपने आप को जहनी तौर पर उसने लड़खड़ाने वाला बना दिया, अब नहीं होने वाली चीज वहां पर होगी। इस तरह से आदमी परेशानी को तस्वुर में पैदा करके अपनी जिंदगी में ले आता है, क्योंकि आदमी आखिरी तजिए में सोच है। वाकई हम कौन है? आपको एक को दूसरे से अलग करने वाली चीज क्या है? उसकी मेंटेलिटी है। आपको मालूम है मैं हूं, यह आपकी सोच में हाथ पांव में नहीं है। आप अपने आप को जानते हो, अपने आप को फील करते हो, आप अपने अंदर अपने आप को फील करते हो, आपकी जैसी सोच है वो आप हो, आप अपनी सोच हो। तो एक आदमी को अपनी सोच में ये रखना चाहिए जो मुसीबत आने वाली है। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा, चलाते चलाते अगर एक्सीडेंट हो गया तो अब नहीं होने का भी कुछ ना कुछ कर देगा। तो जो चीज नहीं हुई उसमें आदमी सोच 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 के खामखा अपने आप को परेशान टॉर्चर करता रहता है, तो मुसीबतें हमको कम टॉर्चर करती है, उन मुसीबतों का परसेप्शन और उसका हमारा सोचना हमको ज्यादा टॉर्चर करता है। और बहुत सारी मुसीबतें ऐसा लगता कल ऐसा होता तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। कंपनी में लोगों को जॉब से निकाल रहे, हो सकता मेरा भी नंबर लगे। अब सोच रहा महीना भर सोच रहा, उसके बाद बॉस ने बुला के बोला तुमको नहीं निकाल रहे हम, डरो मत। अब पिछला महीना जो गया वो क्यों तकलीफ उठाया उसने? पिछला महीने की जो तकलीफ थी, उसकी टेंशन की, जो वजन उसका 5 किलो घट गया, क्यों घटा?
फ्री में घटाओ, बगैर मुसीबत के घटा। वो कहां थी मुसीबत? हकीकत में थी नहीं, वो यहां थी, वो यहां थी। तो आदमी अपने दिल में मुसीबतें पैदा करके अपने लिए मुसीबतें बढ़ा देता है। मुसीबत में परेशान होना डबल मुसीबत है, उससे मसाइल हल करने की ताकत आदमी की निकल जाती है। लेकिन दूसरा एक मुसलमान कैसा है? हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, सो जाओ आराम से, कल है ना, आज तो नहीं है ना, कल की मुसीबत आज की, सो जाओ आराम से। एक्सीडेंट हुआ हो जाएगा, होना है होगा, नहीं होना, नहीं होना है तो रोक सकते क्या? नहीं, नहीं होना है तो होगा क्या? नहीं, अल्लाह चाहेगा होगा, नहीं चाहेगा नहीं होगा। ये क्या हो? एकदम ये मस्त मौला है। ये आदमी दुनिया में मुसीबत में रह के भी खुश रह सकता है। आपको खुश रहना है ना, तो आप अपनी सोच को सही करो, आप खुश रह सकते हैं। ये मिला तो खुश होऊंगा, वो मिला तो खुश होऊंगा, ये हुआ तो खुश होऊंगा, नहीं ऐसा नहीं होता। एक राहत मिलती है तो एक मुसीबत भी आती है। आप ईद के कपड़े ये वो खरीद रहे, ये कपड़े आ रहे, पैसे जा रहे ना, है कि नहीं? यहां से आ रहा है, यहां से जा रहा भी ना आपको। तो दुनिया ऐसी है कि एक वक्त में आपको खुशी आती है, सब खुश, बच्चे खुश, बीवी खुश, और ये बैठा है यहाँ पे क्यों? ये बैठा क्योंकि उनको नहीं मालूम जेब इसकी खाली हुई है। दुनिया में ऐसा है कि आपको एक राहत आएगी, एक तकलीफ भी आपको आएगी। एक दिन में एक खुशी का भी वाकया होगा, आपको एक खबर अच्छी भी आई और एक खबर बुरी भी आएगी। तो आप अगर परेशान इस तरह से होते रहेंगे, आप जिंदगी भर परेशान ही होंगे, दुखी होके ही यहां से जाने वाले। तो एक आदमी को क्या चाहिए? नंबर एक, वो ये सोचे जो तकलीफ पहुंचने की पहुंचेगी, नहीं पहुंचने की नहीं पहुंचने की, पहुंचेगी तो पहुंचेगी, नहीं तो नहीं, अल्लाह चाहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, छोड़ो, चलो आगे बढ़ो, आज का दिन खुशी से तो गुजारो, जो भी होगा कल का कल देखेंगे। कल का आज क्यों? कल का टेंशन आज क्यों? आदमी को टेंशन खरीदता है, टेंशन आदमी खुद खरीदता है। तो ईमान ये आदमी को सिखाता है कि एक आदमी अल्लाह पे छोड़ दे। ईमान, तकदीर पर ईमान, आदमी सोचे जो आने वाली मुसीबतें आएगी, नहीं आने वाली नहीं आएगी, नहीं आने वाली नहीं आएगी। ये एक पहली चीज है जो आदमी को सुकून देती है, अल्लाह पे छोड़ दे आदमी। अगर आने वाली रही आप रोक सकते टेंशन, आपको बहुत टेंशन दिया मैंने, मेरे टेंशन से मुसीबत चली जाती है, ऐसा पावर है आपके टेंशन में, तो फिर टेंशन से जब मुसीबत टलती नहीं तो टेंशन क्यों? जब टेंशन से मुसीबत टलती तो बहुत टेंशन लो, पूरे घर वाले मिलके इज्तमाई टेंशन लो, आओ बैठे सब सर जोड़ के, क्या बोले? इज्तमाई टेंशन है, टेंशन से मुसीबत भाग रही है, ऐसा कुछ है नहीं। परेशान होने से मुसीबत टलती है नहीं, तो फिर परेशान होकर फायदा नहीं है। मुसीबत में परेशान होना मुसीबत और परेशानी के हल करने की ताकत को भी माउफ कर देता है। ये इस्लाम का रूल है। इसीलिए आप देखिए सहाबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात दिन जान का खतरा उनको लगा रहता था, कल क्या होगा मालूम नहीं, कौन दुश्मन आके, वो आदमी आया खड़े होगा सर पे तलवार लेकर, क्या कहा उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? डर लग रहा नहीं, अल्लाह के नबी हमको बोलेंगे तो बहुत डर लग रहा, बोलेंगे तलवार आपकी लेके खड़ा हुआ है आपके सर पे, कहता अतखाफु मिन्नी, डर लगता है? आप बोले नहीं, बोले कौन बचाया? अल्लाह, अल्लाह, आपसे तलवार गिर गई। तो ये पावर होना चाहिए। अगर अल्लाह ने मौत लिखी है मरेगा, अल्लाह ने मौत नहीं लिखी है सब मिलकर गला दबाएंगे तो भी नहीं मरेगा, ये यकीन होना चाहिए। अगर अल्लाह ने लिखा है मिलना है, जॉब मिलेगा, नहीं मिलना है लाख में सही जवाब दूं नहीं मिलेगा, उसको फोन आएगा बोलेगा मेरे रिश्तेदार एक है इसको छोड़ो बाहर, सब अच्छा इंटरव्यू देके भी जॉब नहीं मिलेगा, और लड़खड़ाया लेकिन उसको रहम आया, जाने दो एक अपने पास सीट है अभी, जल्दी से एक आदमी चाहिए ले लो इसको, बाद में इसको ट्रेन करेंगे, मिल सकता है। अल्लाह जो चाहे, होना होगा नहीं होना है नहीं होगा, जाके आदमी बिल्कुल खुले जहन से इंटरव्यू देगा, मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना है नहीं मिलेगा, आगे और जाएंगे हम लोग दूसरी जगह जाएंगे। ये आदमी कैसा रहता है? धक 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 नहीं, आदमी फ्री रहता है, जो होना होगा देखेंगे। ये सुकून के लिए जरूरी है। आपको दुनिया में सुकून चाहिए तो आपको ऐसा जीना पड़ेगा। नंबर एक, दो, आदमी को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी की परेशानियों के एतबार से माजी में अल्लाह ने उसकी मदद की है और मुस्तकबिल में अल्लाह ताला के वादे हैं उन पर निगाह रखें।
यानी आपको बहुत टेंशन आ गया, आपकी ये परेशानी वो परेशानी, बहुत मसाइल में गिर गए, जॉब नहीं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर में कोई बीमार और ये वो सब मसाइल आ गए आपको। आप उस वक्त में ऐसा एक आदमी सोचे, ऐसे मसाइल जिंदगी में पहली बार आए नहीं, इससे पहले भी मेरे पास कई मसाइल आए थे, हल हुए ना हुए, मैं सोचता था ऐसा हुआ तो कितना खराब हो जाएगा, नहीं हुआ। या मैं ऐसी मुसीबत में एक बार फंसा था लेकिन निकल गया मैं उसमें से, कितने प्रॉब्लम्स मुझको पहले भी आए और सॉल्व हुए, ये भी हो जाएगा। तो पास्ट में अल्लाह ने मेरी मदद की है, मैंने मांगा था अल्लाह ये मुसीबत में फंसा अल्लाह तो निकाल, मैं रोजा रखूंगा, अब तक नहीं रखा, ऐ अल्लाह, अल्लाह से मांगा था मैंने और अल्लाह ने बगैर किसी सबब के उसमें से मुसीबत में से निकाला गैबी तरीके से। आदमी अगर सोचे अपने पास्ट में, उसको एग्जांपल्स मिलेंगे कि अल्लाह ने मेरी कई बार ऐसी मदद की है कि मैं समझ सकता हूं कि किसी ने नहीं, सिर्फ अल्लाह ने किया है कि नहीं। ऐसा कई मरतबा ऐसा होता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ एकदम, डॉक्टर बुलाता जाएगा ये, लेकिन डॉक्टर गया ये बचा, ऐसा भी होता है कि नहीं। गैबी तरीके से एक आदमी, एक उसकी मदद ऐसी दिखाई देती है, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर अचानक कोई ऐसी डील हो गई कि वो नुकसान से बच गया, ऐसा लगता इसमें अल्लाह ताला ने कुछ तो भी किया, दिखाई देता है आदमी को, आंख से नहीं दिखाई देता है, सोच से महसूस होता है कि अल्लाह ने किया। आदमी अपने पास्ट में अगर देखता रहे, उसको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि मेरी जिंदगी में अल्लाह ने कई बार गैबी मदद मेरी की है, अब इस मुसीबत में मैं फंसा हूं, इस मरतबा भी अल्लाह करेगा, क्योंकि अल्लाह ने जब पहले किया है तो आज भी अल्लाह कर सकता है, उम्मीद पैदा होती है, आदमी को हिम्मत बढ़ती है। इसी तरह से अल्लाह ने वादे किए, अगर तुम ऐसा करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह से उम्मीद रखना, अल्लाह के वादों पर निगाह रखना आदमी के दिल को धाड़स पैदा करता है। देखिए आदमी को हिम्मत होती है तो ये आदमी टिकता है, नहीं तो आदमी चले जाता दुनिया से। कई लोगों को मुसीबत आती, दिल की कैपेसिटी नहीं होती, आदमी हार्ट अटैक होकर मर जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है लेकिन बोलते ये चले गए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आदमी चला जाता है। घर का कोई बड़ा है, बहुत टेंशन ले लिया, मर गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम बाजों का हल हो जाता है, आदमी दुनिया से चला जाता है। तो आदमी ये सोचे अल्लाह ने जब पहले मदद की और मेरी नहीं तो कम से कम दूसरों की, मेरे सामने कई लोगों की मदद की है, मेरी अपनी जिंदगी में कई मरतबा मदद की है, आज भी करेगा, अब भी करेगा, उम्मीद रखना चाहिए। अल्लाह ने कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, रोशन दिन की कसम और रात की कसम जब वो ढांपते हैं, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ए नबी आपके रब ने आपको छोड़ नहीं दिया, और ऐसा भी नहीं कि वो आपसे नाराज हुआ है, आपके रब ने ये मुसीबतें आप पे आ रही है, तकलीफें आप पे आ रही, मुशरिकीन आपको सता रहे, ये परेशानी वो परेशानी, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं कि आपको मुसीबत में डाल दे, आपकी ये परेशानी सब पे आती है। कैसे? अल्लाह ने पहली कसम क्या खाई? रोशन दिन की कसम और रात की कसम। दुनिया में दिन भी है और रात भी है, दिन की धूप भी और रात का अंधेरा भी है, रात का सुकून भी और दिन की तकलीफ भी है। दुनिया में रात तकलीफ दोनों आती रहती है। अगर आज रात का वक्त है, अंधेरा छाया हुआ है, तो ये रात चली जाएगी, थोड़ी देर में सूरज आएगा, रात के बाद फौरन दिन भी आएगा, रात के बाद दिन भी आएगा। जो लोग पीछे हैं वो थोड़े आगे हो जाएं। दुनिया में दिन और रात का सिलसिला मुसलसल चलता रहता है, रात का अंधेरा। कुरान में देखिए अल्लाह ने कसम खा के कहा कि दिन की कसम जब वो रोशन कर दे और रात की कसम जब वो ढांप ले, इसमें इशारा इस बात की तरफ कि दिन के बाद रात का सिलसिला दुनिया में चलता रहता है, राहत और तकलीफ का सिलसिला चलता रहता है। अंधेरा आता है तो वह हमेशा के लिए नहीं होता, उसके बाद उजाला भी आता है। इसीलिए नबी से अल्लाह ताला ने क्या कहा? रोशन दिन की कसम और इसी तरह से रात की कसम जब वो ढांप दे। आपके रब ने, ए नबी, आपका साथ छोड़ा नहीं है, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, और आपसे रब नाराज भी नहीं है। कभी कभी परेशानी आती, सोचता क्या अल्लाह मेरे से नाराज तो नहीं है, आपका रब आपसे नाराज नहीं है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला, और आखिरत आपसे आपके लिए दुनिया के मुकाबले में और भी ज्यादा अच्छी है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला, आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट से और अच्छा है, आपका मुस्तकबल आपके हाल से और ज्यादा अच्छा है। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, और अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। अभी आपको नहीं मिल रहा आप मायूस ना हो, अभी आपको तकलीफें आ रही हैं आप मायूस ना हो, आगे आपको मिलने वाला है, आपका रब इतना आपको देगा कि आप राजी हो जाओगे। अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या आप ऐसा नहीं था कि आप यतीम थे, अल्लाह ने आपको रहने के लिए जगह दी, पनाह दी, आप यतीम पैदा हुए, पैदाइश से पहले बाप की वफात, पैदाइश के बाद माँ की वफात, फिर दादा ने पाला पोसा, दादा की भी वफात, 8 साल में तीनों सहारे टूट गए, फिर चचा ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, क्या अल्लाह ने माँ बाप के नहीं होने के बावजूद यतीमी की हालत में भी आपकी परवरिश नहीं की, आपको बचाया, परवान चढ़ाया, सब कुछ किया आपके लिए, ऐसा नहीं हुआ? किया ना अल्लाह ने, जब तब किया तो आप भी करेगा, तब कोई नहीं था, तब सहारा बना ना अल्लाह आपका, आज भी बनेगा, जब कुछ नहीं कर सकते थे तब अल्लाह ने आपको बचाया, साथ दिया आपका, अब आप सब कुछ कर सकते हो तो अल्लाह आज क्यों नहीं करेगा? अलम यजिद का यतीमन फआवा ووجدک ضالاً فهدى, सिर्फ खाना पीना नहीं, आप रास्ते की तलाश में थे, हैरान परेशान थे, क्या सही क्या गलत, आपको नहीं मालूम था हिदायत क्या है, ووجدک ضالاً فهدى, आप रहबरी की तमन्ना किए हुए थे, आपको हिदायत की तलाश में आप थे, अल्लाह ने आपको हिदायत दी, आप नहीं जानते थे क्या सही क्या गलत है, अल्लाह ने आपको हिदायत दी, ووجدک ضالاً فهدى ووجدک عائلاً فأغنى, और आपको माली एतबार से अल्लाह ताला ने फैमिली वाला जब देखा तो अल्लाह ताला ने आपको गनी भी कर दिया, जब जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी तो अल्लाह ने आपको माल भी दिया, अल्लाह ने आपको ऐसी बीवी दी जिसने अपना पूरा माल, अपनी तिजारतों का और सब माल नबी की दावत के लिए खपा दिया, अल्लाह ताला ने हर मरहले में नबी का साथ दिया, तो मुसीबतें जब आई तो अल्लाह ने क्या बताया, अल्लाह ताला आपको देगा, मदद करेगा, और ऐसा होता है दुनिया में, रात दिन सिलसिला चलता रहता है, और अल्लाह ताला ने पहले नहीं किया, पहले किया ना तो अभी भी करेगा, तो एक आदमी मुसीबतों में जब पड़े तो ये सोचे कि अल्लाह ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, अल्लाह है, जब मैं अल्लाह का साथ नहीं छोड़ूंगा अल्लाह भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, वो अना माहु इदा दकरनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह खुद फरमाता है, बंदा जब मुझको याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, मुझको नहीं भूलेगा तो मैं तुझको नहीं भूलूंगा, अल्लाह ताला बंदे के साथ होता है, तो एक आदमी मुसीबतों में जब पड़े तो उन मुसीबतों में माजी की मदद अल्लाह की याद करे, इससे पहले अल्लाह ने जो जो मेरी मदद की है, सोचे अल्लाह ने किया ना आज भी करेगा, और आगे जो अल्लाह के वादे हैं अल्लाह कर सकता है, इस पर निगाह रखे कि अल्लाह के वादों पर आदमी निगाह रखे कि अल्लाह मुस्तकबल में इस मुसीबत पर मुझको अजर देगा। नंबर 3, मुसीबतों में जब आदमी पड़े, दुनिया में कौन आदमी है जिसपे मुसीबत नहीं है, है कोई हाथ उठा के बोल सकता है? नहीं, चाहे आप किसी तरह का भी मस्जिद में हो या हॉल में हो, इंडिया में हो, इंग्लैंड में हो, किसी भी मजमे में आप पूछें कि आप में से कौन ऐसा है जिसको प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग आपको गौर से देखेंगे, कौन सी दुनिया से आए, आपको मालूम नहीं, इस दुनिया में जिसकी भी भर्ती हुई है सबको तकलीफ है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, दुनिया में सब परेशान है। फर्क इतना है कि एक आदमी अगर देखे तो उसको अपनी इस तरफ राहत वाले दिखाई देंगे, और इस तरफ अगर देखे तो अपनी तकलीफ वाले भी दिखाई देंगे। हर आदमी को कोई ऐसा आदमी जरूर मिलेगा जो उससे ज्यादा तकलीफ में है, हर आदमी को कोई ऐसा आदमी जरूर मिलेगा जो उससे ज्यादा राहत में है कि नहीं? हर आदमी को मिलेगा, वो देखना चाहे तो अपने से ज्यादा खुश आदमी भी ढूंढ सकता है, वो ढूंढना चाहे तो अपने से ज्यादा गमगीन आदमी भी पा सकता है। अब मुसीबत कैसे पैदा होती है, जब आदमी की निगाहें हमेशा ऐसे लोगों पर टिकी रहें जो उससे अच्छे हालात में हैं, तो उनको देख देख के दिल में क्या होता है, दुख, क्या इनको इतनी खुशी और मैं ऐसा। तो आपको दुख अगर खरीदना है तो आप इस तरह से खरीद सकते कि आप हमेशा ऐसे लोगों को देखें जो आपसे अच्छे हालात में हैं, तो आपकी जिंदगी खुशी खुशी गम में कट जाएगी। आपको गमगीन रहना है, आपको परेशान होना है, मायूस होना है, आप हमेशा अपने से अच्छे हालात वालों को देख सकते हैं, आपके लिए जिंदगी भर पड़ी है। लेकिन अगर आपको खुश रहना है तो आप हमेशा ऐसा आदमी ढूंढ सकते हो, ऐसा आदमी देख सकते हो जो आपसे ज्यादा तकलीफ में है। जब आप उसको देखोगे तो दिल में शुक्र पैदा होगा, अल्लाह अच्छा हो उससे ज्यादा तकलीफ में मैं नहीं हूं, मुझसे ज्यादा कितना तकलीफ में है, मेरी तो तकलीफ अल्लाह का एहसान है कम है, मेरी तो तकलीफ अल्लाह का एहसान इससे कम है, मेरे से ज्यादा तकलीफ में है। तो आदमी अपने से जब कमतर को देखता है, अपने से ज्यादा तकलीफ वाले को देखता है, तो उसके दिल में क्या पैदा होता है, शुक्र। और अपने से ज्यादा अच्छे हालात वाले को देखता है तो उसके दिल में क्या पैदा होती है, शिकायत। क्या ऐसा उसके दिल में कब पैदा होता, जब अपने से अच्छे हालात वाले को देखता है। तो एक आदमी आप मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, आप उसको दो चॉकलेट दो, कितना खुश होगा, दोनों हाथ में दो चॉकलेट। और आप दूसरे बच्चे को तीन दो, अब उसको देख के क्या होगा वो, अब ये दो की खुशी, आप दो ही है लेकिन उसको तीन कैसे दिए, तो अब क्या होगा उसको, उसको गुस्सा आएगा, वो एकदम डिमांडिंग हो जाएगा, नाराज होगा, उसकी वो चॉकलेट की जो खुशी थी चेहरा क्या हो जाएगा एकदम। लेकिन अगर वही बच्चा किसी दूसरे बच्चे को दे जिसको एक ही चॉकलेट मिलेगा तो उसको दो बताएगा। इस तरह से ये इंसान है, उस बच्चे की तरह बड़े भी हैं, चीजें बदल जाती हैं, आप भी वही रहता है, उम्रें बदल जाती हैं, आदमी वैसे ही रहता है। कि एक आदमी जब अपने से ज्यादा वाले को देखता है तो आदमी गमगीन हो जाता है, अपने से कम वाले को देखता है तो शुक्र पैदा होता है। तो एक इंसान अगर खुश रहना चाहता है या गमगीन रहना चाहता है उसकी चॉइस है। आपको खुश रहना है तो भी आपके पास एक रास्ता है, आपको गमगीन होना है तो भी आपके पास रास्ता है। आप अपनी निगाह हमेशा ऐसों पर रखें जिनके पास, आपके पास खाने के लिए बिरयानी नहीं है, किसी के पास खाने के लिए सूखी रोटी भी नहीं है, आपके सालन में नमक कम है, किसी के पास सालन ही नहीं है, आपके पास अच्छे जूते नहीं है, किसी के पास पांव नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, एकदम आपके पास दो ड्रेस नहीं है, किसी के पास सतर छुपाने के लिए भी नहीं है। दुनिया में हमेशा ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, उन पे जब आप निगाह रखोगे तो आप अपने पास जो कुछ है उसमें खुश रह सकते हो। मेरे पास इतना तो है, मेरे पास इतना तो है, उसके पास तो उतना भी नहीं है, तो शुक्र पैदा होता है और आदमी जितना है उसमें खुश रह सकता है। देखिए खुशी चीजों में नहीं होती है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है दुनिया का, खुशी चीजों में नहीं होती है, खुशी अंदर दिल में होती है। इसीलिए एक ही चॉकलेट एक बच्चे को दे तो खुश होता है लेकिन उसके अब्बू को दे तो उसको ऐसा कुछ खुशी होती नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, बोलेगा मुझको डायबिटीज है, मुझको क्या दे रहे हैं आप, मुझको डायबिटीज है, उसको खुशी नहीं होगी उसमें। लेकिन बच्चा एक चॉकलेट पे खुश हो जाता है, तो खुशी चॉकलेट में होती तो फिर सब खुश होते, दादा जान भी खुश हो जाते, लेकिन खुशी उसमें नहीं है, खुशी आदमी के अंदर होती है। लिहाजा एक आदमी को चाहिए कि वो निगाह ऐसों पर रखे जिनको उससे कम मिला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा नज़र अहदुकुम इला मन फुद्दिल अलैहि फिल माल वल खल्क फलयन्ज़ुर इला मन हुवा असफल मिन्हु। आप फरमाते हैं कि जब तुम में से किसी की निगाह किसी ऐसे इंसान पर पड़े जिसको माल और खूबसूरती जिस्मानी एतबार से अल्लाह ताला ने और ऊंचा दर्जा दिया है, बहुत माल दिया, बहुत हेल्दी, बहुत खूबसूरत बनाया, तो ऐसे आदमी को चाहिए कि वो अपने से कम वाले को भी देख ले, एक नजर अपने से कम वालों पर भी डाल दे। क्यों? आप फरमाते हैं फहुवा अजदरु अल्ला तजदरु निअमतल्लाहि अलैकुम। ये इसलिए जरूरी है कि कहीं तुम अल्लाह की जो नेमत तुम पर है उसकी नाकदरी न करने लग जाओ। जो मिला है उसकी आदमी नाकदरी कब करता है? जब अपने से ऊपर वालों को देखता है, क्या मुझको ये मिला और उसको वो। ये जिसको नहीं मिला है उसको देखेगा तो लगे उसको नहीं मिला, मुझको तो मिला, मुझको मिला। तो एक आदमी को, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, तो आप अपने से कमतर को देखें, अपने से ज्यादा मुसीबत में जो आदमी उसको देखें तो आप अपनी हालत में खुश रह सकते हो। अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो आप अपनी हालत में खुश रह सकते नहीं। नंबर चार, आदमी मुसीबत में जब पड़ता है तो परेशान होता है। अगर वो ये समझे कि ये मुसीबत मेरे दर्जात को बढ़ाने वाली साबित हो सकती है और अल्लाह ताला जितने हाई लेवल के लोग होते हैं उन पर हाई लेवल की मुसीबत डालता है, जो आदमी जितना मजबूत होता है उस पर उतनी मजबूत मुसीबत आती है। कच्चा पक्का आदमी होता है उसके ऊपर कच्चे पक्के हालात आते हैं, लेकिन ठोस आदमी जो होता है उसके सर पर ज्यादा बरसात होती है, अल्लाह का ये कायदा है। तो अगर मुसीबत आ रही है और आदमी ये सोचे हो सकता है अल्लाह के यहां मेरा मकाम ज्यादा है तभी तो इतनी मुसीबत आ रही, चलो अच्छी बात है अल्लाह की तरफ से दर्जात बढ़ने का जरिया बन रहा है और हो सकता है अल्लाह मुझसे इस बुनियाद पर मोहब्बत करे कि मैं इसमें सब्र कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों को अल्लाह मुसीबत में डालता है। दुनिया का कायदा अलग है, जो ज्यादा मुकर्रब होता है उसको जॉब भी मिल जाता, गाड़ी भी मिल जाती, सब हो जाता उसको। अल्लाह का ऐसा नहीं है, अल्लाह का जितना करीब होता है अल्लाह उसको उतना ज्यादा तकलीफ में डालता है। ये दुनिया में खो ना जाए आखिरत को भूल के, अल्लाह से दूर ना हो जाए, दुनिया का हो ना जाए, दुनिया का नहीं होगा अल्लाह का हो जाए। मुसीबत में रहता है तो अल्लाह 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 करते रहता है, जरा दुनिया आ गई हाथ के अंदर
हाँ तो बिस्मिल्लाह शुरू कर देता है, अल्लाह को भूल जाता है, घर पे खाली लिख के लगाता है हादा मिन फ़ज़्ल रब्बी, और सारी मुसीबतें उसकी जिंदगी में खुराफात और बेहयाइयां और ऐश परस्ती आ जाती है, अल्लाह को भूल जाता है। फिर जब मुसीबत आती फिर वापस ताजुद फजर तो क्या ताजुद में भी उठना शुरू कर देता है। तो दुनिया की मुसीबत अल्लाह से बंदे को जोड़े रखती है, इसलिए अल्लाह जिन बंदों को अपने से जोड़े रखना चाहता है उन बंदों पर मुसीबतें डालता रहता है। क्यों? ये मेरा बंदा मुझसे जुड़ा रहे, मुझसे दूर न जाए, ये अल्लाह का कायदा है। अगर आदमी ये सोचे कि अल्लाह ताला मुझको जोड़े रखना चाहता है, दुनिया में तकलीफ डालकर मुझको आला मकाम देना चाहता है, तो आदमी को वो बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी साद रजी अल्लाह तआला कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह अय्युन नास अशद्दु बलाअन, अल्लाह के रसूल लोगों में सबसे ज्यादा मुसीबतें बलाएं किन पर आती हैं? आपने जवाब दिया अल अंबिया, अल्लाह के नबियों पर सबसे ज्यादा मुसीबत किस पर आती है? अल्लाह के नबियों पर। होना तो ये चाहिए अल्लाह के एकदम नबी ने, उनके लिए एकदम ठाट बाट होना चाहिए, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं होता, उनके ऊपर पत्थर बरसते हैं, उनको लोग ताने देते हैं, उनकी मारपीट उनको करते हैं, उनको दुनिया में भूखा प्यासा रहना पड़ता है। जितने आला दर्जे के इंसान होते हैं उन पर उतनी मुसीबतें आती रहती हैं। सबसे ज्यादा बला किस पर आती है? फरमाया अल अंबिया ثم الامثل فالامثل, फिर उनके बाद, फिर उनके बाद यानी उनके नीचे नीचे लेवल के जो लोग होते हैं, जैसा लेवल होता है वैसी मुसीबत आती है। فيبتلى الرجل على حسب دينه, आप क्या फरमाते हैं? आदमी उसके दीन के एतबार से आजमाया जाता है, जैसा दीन वैसी आजमाइश, जितना ठोस मजबूत दीन वैसी आजमाइश। فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ, किसी आदमी का दीन जब मजबूत होता है तो उसकी बला भी उस पर मजबूत आती है। وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اُبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ, लेकिन किसी आदमी का दीन थोड़ा नरम हो, कच्चा पक्का हो, मुसीबतें भी उस पर कैसी आती हैं? कच्ची पक्की आती है। فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطيئة, और आप फरमाते हैं फिर क्यों बला जब डालता है अल्लाह, तो क्या फरमाते हैं? बंदे पर बलाएं आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, यहां तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा जमीन पर चल रहा होता है और एक भी गुनाह उस पर नहीं होता है, एकदम यानी डिफेक्ट प्रूफ, डिफेक्ट फ्री, गुनाह बिल्कुल नहीं, पाक साफ जमीन पे चल रहा, एक भी गुनाह उस पर नहीं होता। अल्लाह इन गुनाहों की वजह से क्या करता है? तकलीफें जब आती है उन गुनाहों को अल्लाह ताला धो देता है उसको, एकदम गुनाह उसके ऊपर कुछ भी नहीं। तो एक आदमी मुसीबत में सोचे कोई बात नहीं, गुनाह माफ हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं, और अल्लाह का कुर्ब मिल रहा है, कोई बात नहीं। अल्लाह दुनिया में तकलीफ डाल के बंदे को अपने करीब कर दे तो कितनी आसान चीज है कि नहीं है? अगर एक बादशाह किसी को थप्पड़ मार के करीब करे तो और मारो बोलेगा आदमी, बोलेगा कि नहीं? अगर किसी को दो तमाचे लगा के जॉब मिलता हो तो बोलेगा भाई चलेगा, दे दो, दो नहीं दो दर्जन दे दो, पेमेंट पैकेज बड़ा है। अल्लाह के यहाँ का पैकेज कितना बड़ा है, अल्लाह के यहाँ ये मिलेगा वो मिलेगा, वो नहीं, अल्लाह मिलेगा और क्या चाहिए? आपको बादशाह मिल रहा है ना, बादशाह मिल रहा है का मतलब सब मिलेगा, सब मिलेगा का मतलब बादशाह मिलेगा जरूरी नहीं है, याद रखिए, सब मिला बादशाह नहीं मिला, सजा भी मिल सकती है। फिरौन को सब मिला ना दुनिया में, बादशाहत मिली, सब मिला, अल्लाह नहीं मिला उसको, रब नहीं मिला उसको, सब मिला उसको। कहां गया वो? सीधा पानी में गया। लेकिन मूसा अलैहि सलाम को रब मिला, रब मिला तो सब मिला, फिर वो गया उसके बाद मूसा अलैहि सलाम ही, फिर उनके बाद किंग कौन? वही किंग, उनकी सब चल रही, फिर मन्नु सलवा भी नाजिल हो रहा है, ये तो खाता था उगा के, उनको मिल रहा है ऊपर से, अल्लाह ताला जो चाहे वो होता है। तो हमको बादशाह मिलना चाहिए दुनिया की मुसीबतों में, अगर अल्लाह हमको मिल जाता है सस्ता सौदा है, यहाँ ठोक पीट के मुसीबत में धक्का बुक्का इधर उधर से होके अल्लाह मिल रहा हमको, बस हुआ ना हमको, और क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? अल्लाह से बढ़ के कुछ चाहिए? अल्लाह से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह अगर मिल रहा है हमको दुनिया की मुसीबतों में बहुत सस्ता सौदा है। इसीलिए आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बंदे पे अपने नजदीक जो बंदे होते हैं, मुकर्रब जो बंदे होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा मुसीबत डालता है।
तो ये आदमी के लिए क्या हो जाती है, थोड़ी धाड़स। चलो अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है, मुझको आजमाइश में डाल रहा है, अल्लाह के नजदीक शायद मैं नेक बंदा हूँ, शायद मेरा मकाम अल्लाह के नजदीक है, अल्लाह जैसा मेरा गुमान है इससे भी अच्छा मुझको बना दे, अल्लाह तेरा कुर्ब दे दे। आदमी ऐसा कर सकता है, उसको हिम्मत आती, थोड़ी उम्मीद आती है, वरना आदमी नाराज हो जाता है अल्लाह से, अल्लाह से नाराज हो जाता है। तो ये पहली चीज है जो आदमी को याद रखना चाहिए। इसी तरह से मसाइल के हल की कोशिश भी करना चाहिए कि अगर परेशानियां दुनिया में मसाइल आते हैं, आदमी जो असबाब अल्लाह ने पैदा किए हैं उन असबाब को इख्तियार करे। जॉब नहीं तो उसके लिए इंटरव्यू दे, घर पे बैठ के सोचे कि जॉब आएगा ऐसा ना करे। दवाई नहीं कर रहा और सोच रहा है कि शिफा मिलेगी ऐसा ना करे, क्योंकि इस्लाम का कायदा ये नहीं है, कोशिश करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अनस बिन मालिक कहते हैं, एक साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह अअक्लुहा व अतवक्कल औ उतलिकुहा व अतवक्कल। अल्लाह के रसूल, ये मेरा ऊंट है, इस ऊंट को मैं बांध के अल्लाह पे भरोसा करूं कि इसको छोड़ के भरोसा करूं? ऊंट जाना है तो जाएगा, रहना है तो रहेगा। बाइक लॉक करूं टिकेगी या बगैर लॉक के भी टिकेगी, क्या करूं, लॉक लगाऊं कि नहीं लगाऊं? ऊंट बांध के अल्लाह पे भरोसा करूं या ऊंट को उसके हाल पे छोड़ दूं कि नहीं जाएगा, जाना हो तो जाएगा? अल्लाह पे भरोसा किस बुनियाद पर करूं मैं, बांध के छोड़ के? आपने फरमाया अक्लहा व तवक्कल, उसको बांध और अल्लाह पे भरोसा भी कर। ऊंट को बांध, भागना नहीं चाहिए इसके लिए, और अल्लाह पे भरोसा भी कर, अल्लाह उसको संभाल के रखेगा। तो लॉक भी कर और भरोसा भी कर, ये नहीं कि लॉक नहीं कर रहा और भरोसा कर रहा और फिर बाद में गए तो क्या अल्लाह भरोसा किया और ले गई गाड़ी, तो लॉक क्यों नहीं किया, था ना तेरे पास चाबी थी ना, लॉक करना चाहिए था। तो ये तिर्मिजी की रिवायत है। इससे एक उसूल इस्लाम का मालूम ही होता है कि इस्लाम हमको दीवाना बनने की दावत नहीं देता है, बल्कि इस्लाम हमको समझदारी की दावत देता है कि दुनिया में चलने के लिए जब अल्लाह ने पांव दिए हैं, खाने के लिए हाथ दिया है, देखने के लिए आंख दी है, तो क्यों दिया है? ये काम करने के लिए वसाइल और मींस और असबाब दिए हैं, असबाब इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। आदमी कहेगा आंख बंद करके, अल्लाह चाहेगा तो दिखेगा, ये दीवाना ही है, तो उसको देखने के लिए आंख दिए ना, तो आंख खोलेगा तो दिखेगा, नहीं बंद किए तो भी अल्लाह चाहे तो दिखेगा, तो ये आदमी क्या है, पागल आदमी है। उसको जो अल्लाह ने दिया है इस्तेमाल के लिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मसाइल के लिए वो सोल्यूशन के लिए जो करना है वो करे, जॉब नहीं है कोशिश करे, भागदौड़ करे, एक नहीं एक तीर में सब होना चाहिए, नहीं तीर मारता रहे, एक तो तीर लगेगा उसका। जो आदमी तीर मारता नहीं उसका तीर कभी लगेगा नहीं, लेकिन जो तीर मारता रहे एक तो लगेगा, तीर नहीं लगे तो चौथा भी नहीं लगे, जरूरी नहीं, लेकिन जो तीर नहीं मार रहा उसका तीर तो लगेगा ही नहीं, लेकिन जो तीर मार रहा उसका तीर बराबर निशाने पर लगेगा। कोशिश करता रहे, एक डॉक्टर नहीं दूसरा डॉक्टर, एक इंटरव्यू नहीं दूसरा इंटरव्यू, कोशिश करे, हिम्मत नहीं हारे। बाद औकात अगला मौका होता है और आदमी बोलता है जाने दो, अगला मौका होता है और आदमी बोलता है जाने दो, हो सकता है नेक्स्ट इसमें हो जाए। उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए और कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये पहली चीज मालूम हुई कि फिक्रों की एक वजह दुनिया के मसाइल होता है, दुनिया के प्रॉब्लम्स। आदमी को जब प्रॉब्लम्स घेर देते हैं और एक साथ सारे प्रॉब्लम बात करने लग जाते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता, सब प्रॉब्लम जमा हो जाते, इसको हर एक प्रॉब्लम बात करना शुरू कर देता है, अब किसी की भी बात समझ में नहीं आती, आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। प्रॉब्लम्स में आदमी इस तरह से करे जो हमने देखा। नंबर दो, आदमी मायूस गमगीन और परेशान हो जाता है, दूसरी वजह उसकी है बीमारियां। बीमारी भी आदमी को क्या कर देती है, तोड़ देती है, मेडिकल प्रॉब्लम। एक बार दवाखाने का मुंह आदमी देखा तो फिर जब भी आईना देखता है गमगीन हो जाता है, दवाखाना आदमी को थका देता है। एक आदमी बीमार होता है, बाज बीमार ऐसे होते हैं, एक बीमारी से दूसरी बीमारी, दूसरी से तीसरी, एक दवाखाने से दूसरा दवाखाना, दूसरे से तीसरा। बाज औकात ऐसा होता है कि एक बीमारी कई बीमारियां पैदा कर देती है, बाद औकात ऐसी बीमारियां होती है डॉक्टर बोलता है कि अब ये बीमारी जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। कोई आदमी बिस्तर पर पड़ा रहता है बीमार, उम्र हो चुकी है, आदमी को बीमारी थका देती है, आदमी उम्मीद छोड़ देता है, गमगीन होता है, दवाई के ऊपर दवाई, दवाई के ऊपर दवाई, एक दवाई से दूसरी दवाई, एक दवाई खा रहा है उसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है उसके लिए दूसरी दवाई, यानी दवाई खुद बीमारियां बन जाती है। आदमी थक जाता है, गमगीन हो जाता है, क्या होना मेरी जिंदगी का, ऐसा अच्छा खासा आदमी था, भाग दौड़ करता था, बीमार पड़ा, घर में बैठा, बिजनेस पूरा फ्लॉप और सब जिंदगी बर्बाद, बच्ची निकाह की है, जॉब के लिए बच्चा अभी तैयार था, उसकी एजुकेशन चालू है, उसकी फीस भरनी है, दुकान बंद, परेशान हो जाता आदमी, यही घर पे बैठ गया जो असल कमाने वाला था। लोग टूट जाते हैं बीमारी की वजह से, फिर इलाज की उम्मीद होता नहीं होता, इलाज हो रहा नहीं, ये दवा ट्राई कर रहे, वो डॉक्टर ट्राई कर रहे, बाबा भी आके सब कुछ करके जा रहे, कुछ नहीं हो रहा, आदमी बीमारियों में थक जाता है। थकना नहीं चाहिए, क्या करें? अल्लाह के नबी सब, नंबर एक, मुसीबत जब बीमारी आती है, परेशानी आती है, उसके अजर पर निगाह आदमी रखे। ठीक है, बीमार तो बीमार, किसी को कोई बीमारी, किसी को किसी का हार्ट की शिकायत है, किसी को कोई और उससे ज्यादा, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई और बीमारी है, किसी को टीबी है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, किसी को कोई और बीमारी है, किसी को बर्स की बीमारी, किसी को क्या है। अगर बीमारी में किसी इंसान को अल्लाह ताला मुब्तिला कर दे तो वो उस बीमारी में अजर पर निगाह रखे कि इस तकलीफ पर अल्लाह के पास अजर मिलेगा। ठीक है, दुनिया में तकलीफ है, अल्लाह इस पर अजर देगा। मुसीबत में अजर पर निगाह रखना मुसीबत को हल्का कर देता है, मुसीबत में अजर पर निगाह रखना मुसीबत को हल्का कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मा युसीबुल मुस्लिम, मा युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज्नि वला अदन वला गम्मिन हत्ता शौकत युशाकुहा इल्ला कफरल्लाहु बिहा मिन खताया। इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है। जो भी बंदा, मुसलमान बंदा, जो भी मुस्लिम बंदा, उसको जो भी दुनिया में थकन और चिपकी हुई मुसीबत, वसबिन और इसी तरह से वला हम्मिन फिक्र, या इसी तरह से हुज्निन गम, या अदन तकलीफ, या गम जो एकदम दिल में घुटन पैदा करने वाली चीज, हत्ता शौकति युशाकुहा, यहां तक कि एक कांटा भी उसको चुभता है, कांटा भी उसको चुभता है, इल्ला कफरल्लाहु बिहा मिन खतायाहु, तो अल्लाह ताला उसकी जो भी गुनाह हुए हैं अल्लाह सब का कफारा उसका बदल कर देता है उसको। एक मोमिन चल रहा है, आप एक औरत है, कुछ सीते सीते सुई हाथ में लग गई, चुभ गई, उस पर भी गुनाह माफ होते हैं। आप चलते चलते पांव में कांटा आपके चुभ गया, उस पर भी गुनाह माफ होते हैं। बैठे बैठे आपको दिल में फिक्र पैदा हुई कल क्या होगा, आपको उस पर भी गुनाह माफ होते हैं। आपने सोचा मेरा एक दोस्त था, उसकी वफात हो गई, मेरा बच्चा बीमार है, आपको उस फिक्र पर, उस गम पर, उस पर भी सवाब, उसके ऊपर भी आपको गुनाह माफ होते हैं। मोमिन बंदे पर जो हालात आते हैं, गम, फिक्र, तकलीफ, कांटा चुभना, हर तकलीफ पर उसका गुनाह माफ होता है। तो आदमी यहां तकलीफ हो रही है, उस पर ही सोचते रहे इस पर भी एक गुना माफ हुआ होगा, इस पर भी एक गुना माफ हुआ होगा, इस पर भी एक गुना माफ हुआ होगा। अगर आदमी की निगाह इस पर हो कि मेरा गुना माफ हो रहा है, अगर मुझको तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए उस गुना तकलीफ में भी राहत पैदा होती है। क्यों? इसलिए कि उस गुनाह को अगर अल्लाह माफ न करे तो जहन्नम की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक आदमी को अगर ऑप्शन दिया जाए, दुनिया में तुझको कांटा चुभे या जहन्नम में तुझको आग में जलाया जाए, क्या चाहिए? क्या बोलेगा आदमी? एक दर्जन कांटे दो। कांटे वहां के जक्कूम चाहिए या यहां के कांटे चाहिए? क्या चुनेगा आदमी? यहां के कांटे चल जाएंगे, चलेगा चलेगा, यहां चलेगा। क्यों? वो सामने है ना। तो दुनिया की, देखिए याद रखिए इसको, दुनिया की मुसीबत के वक्त जब जहन्नम और आखिरत की मुसीबत आदमी याद करता है और इस मुसीबत को उसका सब्स्टिट्यूट मानता है, तो ये इस मुसीबत हल्की हो जाती है। एक आदमी से कोई पुलिस कहे कि 10 साल जेल में चाहिए या एक दिन चौकी में चाहिए, आज क्या चौकी 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 में चाहिए, एक दिन रखो वहां पे, 10 साल जेल में कौन जाएगा भाई? तो बड़ी मुसीबत जब सामने हो, और अगर वो बोले गार्डन चाहिए या चौकी चाहिए, तो बोले गार्डन चाहिए, क्योंकि ऑप्शन उसके पास क्या है, बड़ी तकलीफ या छोटी तकलीफ। जब बड़ी तकलीफ को सोचता है तो छोटी तकलीफ पे आदमी राजी हो जाता है। साहब अगर बुलाए पुलिस और 2-3 डंडे मार के बोले जा, तुझको जेल में नहीं डालता, फांसी नहीं, थप्पड़ मार के भेज दे, थप्पड़ और फांसी नहीं, दो ऑप्शन अगर दे कोई आदमी, कोई जज दे दे, तुमको ऑप्शन है कटरे में खड़ा हुआ है साहब, बोलो क्या बोलते आप। जज अगर उसको बोले दो में से एक तुम चुनो, आज 26 जनवरी है तुमको ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो तुमको फांसी या फिर तुमको ये बाहर पुलिस खड़ा दिख रहा है वो 10 डंडे लगाएगा तुमको, वो देखेगा पलट के, 10 नहीं 2 मेरी तरफ से लगाओ, एक दर्जन पूरे करो। लेकिन फांसी टल रही उसकी, वो खुश होगा कि नहीं? डंडे खाएगा बहुत खुश होगा, डंडे खाते खाते हंसेगा, डंडे खाते खाते दिल में इतना खुश हो रहा है डंडा खा रहा है लेकिन फांसी जा रही है, रस्सी टली डंडा मिला। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो इसके मुकाबले में बड़ी तकलीफ को देख रहा है। अगर वो तकलीफ नहीं होती तो एक भी डंडे पे चिल्लाना शुरू करता था, लेकिन ये डंडे पे चिल्लाओ भी मत, चिल्लाने से फांसी वापस से आ गई तो क्या करना। जब दुनिया में आदमी छोटी तकलीफ के मुकाबले में आखिरत की बड़ी तकलीफ देखता है और ये सोचता है भाई इसकी वजह से वो टल रहा अपना, तो फिर ये क्या हो जाता? हल्का हो जाता है। तो आदमी दुनिया की तकलीफ में आखिरत की तकलीफ का माफ होना और टलना याद करे, ये हल्का होता है, इसमें आदमी खुश रह सकता है। ये हमको इस्लाम में तालीम मिलती है। और आगे आइए, जितनी तकलीफ होती है, अब आदमी सोचेगा मेरे गुनाह तो है नहीं, कोई नेक आदमी इतना हो सकता है जो ख्याली नेक हो, बोलेगा मैंने गुनाह किसका, किसी का दिल दुखाया नहीं मैंने। बहुत सारे लोग होते हैं मैं सबका अच्छा करता सब मेरा बुरा करते, मैं बहुत नेक हूँ और नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता। वो गुना यही समझता है कि सब किसी को तकलीफ देना गुना है, अल्लाह के दीन को तकलीफ देना गुना नहीं समझता हो। ऐसे भी लोग होते हैं, उसको नहीं मालूम होता गुना किसको कहते हैं। तो अगर कोई आदमी ऐसा है, ये सोचिए कि सिर्फ ये नहीं कि गुना माफ होते हैं, बल्कि अल्लाह ताला मुसीबतों में अजर भी देता है। ऐसा नहीं किसी को दुनिया में अल्लाह ने तकलीफ में डाला, आदमी दूसरों को देखे वो भी नमाज पढ़ते मैं भी, लेकिन वो आदमी इतना खुश खुश है, उसके ऊपर उसके पास राहत है, मेरे पास मुसीबत है, तो मैं मुसीबत में और वो खुशी में है, तो हम भी इबादत कर रहे वो भी इबादत कर रहे, क्या फायदा, मुझको क्यों मुसीबत में डाला। याद रखिए अल्लाह ने अगर आपको मुसीबत में डाला है तो आपकी उस मुसीबत में अगर आप ठीक ठाक चलते, सही ढंग से वो करते हो जो अल्लाह ने आपसे चाहा है, तो अल्लाह जो आपको देगा उसको नहीं देगा। इस मुसीबत में जो स्ट्रगल आपने जिंदगी में की है, जो तकलीफ बीमारी आप उठा रहे हो, एक आदमी सेहतमंद है नमाज पढ़ रहा है, आप बीमार हो और बीमार होने के बावजूद भी आप नमाज पढ़ रहे हो, सेहतमंद को जो सवाब मिल रहा है और आपको मिल रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। जो आदमी मुसीबत में है बीमार है और वो आदमी दीन पर चल रहा है और बर्दाश्त कर रहा है अपनी तकलीफ को, उस आदमी को जो अजर मिलेगा सेहतमंद को नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन अज़म अल जज़ाई मा अज़म अल बला, अजीम तरीन जज़ा अजीम तरीन बला के साथ होती है। जितनी बड़ी मुसीबत होती है उतना बड़ा अजर होता है। वो इन अल्लाह, देखिए अब क्या है, इन अल्लाह इदा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसको मुसीबत में डाल देता है। किसी को मुसीबत में डालना अल्लाह ताला के उससे मोहब्बत करने की अलामत होती है। अल्लाह ताला किसी से अगर मोहब्बत करता मेरा बंदा, अल्लाह उसको डाल उसको तकलीफ में, अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसको मुसीबत में डाल देता है, इब्तला हम उसको आजमाइश में मुब्तला कर देता है। फमन रदिया फलहु रिदा वमन सखित फलहु सुख्त, फिर मुसीबत में पड़ने के बाद अल्लाह ने तो मोहब्बत की इससे, मोहब्बत करके इसको प्यार से मुसीबत में डाल दिया, अब क्यों मुसीबत में डाला, इसको यहां मुसीबत में डालो ये अल्लाह का बना रहे और यहां की मुसीबत से उसकी आखिरत की मुसीबत को टाल दो, नहीं नहीं चाहिए, ठीक है यहां आराम से रहे, वहां पिटाई तेरी होगी। तो आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो यहां उसकी पिटाई कर देता है, यहां उसको मुसीबत में डाल देता है, और कभी किसी अच्छे इंसान को जैसे आपने सुना उसको भी यहां पे मुसीबत में डालता है। क्यों? इसको इतना मर्तबा, इसमें मुसीबत नहीं आएगी तो उसके दर्जात कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पक्का है ये अच्छे हालात में भी अमल करेगा मुसीबत में भी अमल करेगा। अच्छे हालात में अमल करके इतना अजर नहीं मिल सकता है, इसको और मर्तबा देना है क्योंकि अच्छा है, इसको ऊंची जन्नत देना है, इसको मुसीबत में डालो ये मुसीबत का भी अजर लेगा और अमल का भी अजर लेगा, और ऊपर भेजना है उसको 99 दर्जे जन्नत के, जन्नत के 100 दर्जे हैं। अब राहत में अमल करके उसको 35% पे आएगा, लेकिन मुसीबत में जब अमल करेगा एकदम
कहां जाएगा, 90% वाले में जाएगा, फिरदौस भी मिल सकती है उसको। तो मुसीबत में अल्लाह उसको डालता है जब उससे मोहब्बत करता है। फिर आप फरमाते फमन रदिया फलहु रिदा वमन सखित फलहु सुख। फिर मुसीबत में पड़ने के बाद जो अल्लाह से राजी रहता है अल्लाह भी उससे राजी हो जाता है। मुसीबत में पड़ने के बाद जो अल्लाह से नाराज हो जाता है अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। जो मुसीबत में अल्लाह से नाराज होता है अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। इसको इमाम तिर्मिदी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। इसी तरह से एक आदमी को चाहिए कि बीमारियों में आदमी अल्लाह से आफियत मांगे, उम्मीद नहीं खोए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वसल्लल्लाहु अलैफिया वसल्लल्लाहु अलैफिया, अल्लाह से आफियत मांगते रहो, अल्लाह से आफियत मांगते रहो। उसको इमाम बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया और ऐसी कई और हदीसें भी हैं। तो एक आदमी अगर बीमारी में है, परेशानी में है, वो अल्लाह से आफियत मांगता रहे, अल्लाह अच्छे हालात दे, उसको अल्लाह से आफियत मांगते रहना चाहिए। बुरा बुरा ना सोचे, बुरा बुरा नहीं सोचे। परेशानी में पड़ के आदमी क्या सोचता है, कभी ऑपरेशन, अभी ऑपरेशन है किसी का मिसाल के तौर पर, अब ऑपरेशन थिएटर में जाना है और वो सोच रहा है कभी ऑपरेशन फेल हुआ तो, अब इसके सोचने से फेल होने वाला है नहीं, ऑपरेशन ये कर रहा नहीं तो डॉक्टर करेगा, फेल होने वाला होगा तो फेल होगा और पास होने वाला होगा तो पास होगा। इसके सोचने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सोच रहा है तो इसकी मेडिकल कंडीशन क्या होगी, और ज्यादा खराब होगी। तो एक आदमी यानी खामखा परेशानियां न सोचे बल्कि अल्लाह से आफियत मांगे। आफियत मांगना अल्लाह से, अच्छी हालत मांगना अल्लाह से इंसान की मेंटल कंडीशन को स्टेबल करता है। ए अल्लाह मुझको शिफा दे, ए अल्लाह मेरा ऑपरेशन कामयाब कर दे, ए अल्लाह मेरी हालत अच्छी कर दे, ए अल्लाह मुझको अच्छा। ये जब ऐसा मांगेगा तो पॉजिटिव 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 जब जहन में रहेगा आदमी में हिम्मत आएगी कि जब मैं मांग रहा किससे मांग रहा, मैं अल्लाह से मांग रहा हूं, अल्लाह से मांग रहा हूं, अल्लाह देता है तो हो सकता है अल्लाह दे, अल्लाह से मांगने से अल्लाह देता है, तो उसका जहन हिम्मत वाला बनेगा। वरना उल्टा उल्टा सोचेगा आदमी बिल्कुल फिसल जाएगा, ढसल जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा और हालत बुरी हो जाएगी। इसलिए अल्लाह से आफियत मांगते रहना चाहिए। इसी तरह से आदमी बीमारी के मामलात में अगर बीमार है और परेशान है, बहुत बीमार है और परेशान है और इलाज नहीं कर रहा, तो ये सही है नहीं, उसको कोशिश करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं उसामा इब्न शरीक, कहते हैं कालतिल अअराब या रसूल अल्लाह अला नतदावा। लोग देहाती लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा ए अल्लाह के रसूल क्या हम इलाज न करें, यानी इलाज करना कि नहीं करना, तकदीर में तो अच्छा होगा नहीं तो नहीं होगा, तो इलाज करें कि नहीं करें, शिफा अल्लाह देता है तो हम दवा करें कि ना करें। आपने फरमाया नाम या इबादल्लाह तदावो, कहा कि हाँ हाँ अल्लाह के बंदो दवा करो, दवा करो, इलाज करो। फइन्नल्लाह लम यदा दाअन इल्ला वदा लहु शिफा, इसलिए कि अल्लाह ने जो भी बीमारी नाजिल की है उसके लिए अल्लाह ने शिफा भी रखी है। हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। आपने फरमाया इल्ला दाअन वाहिदा, सिवाय एक बीमारी के। कालू या रसूल अल्लाह वमा हु, पूछा कि अल्लाह के रसूल वो क्या बीमारी है, आपने फरमाया अलहराम बुढ़ापा, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है कि बूढ़ा आदमी कुछ तो टॉनिक खा के एकदम जवान, फिर से एक दूसरा निकाह हो सकता नहीं, जवानी वापस आ सकती है नहीं, इसलिए जवानी का अमल, जवानी का अमल है, जवानी को जाया नहीं करना चाहिए। तो बुढ़ापा जाता है आदमी का, कोई टॉनिक खा के बूढ़ा जवान बन सकता है नहीं, अब रिश्ते का नहीं फरिश्ते का वक्त आ गया है, अब नहीं, इसका कोई इलाज है नहीं, बुढ़ापे का इलाज नहीं है, हराम बुढ़ापे का इलाज नहीं है। इसको इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिदी, नसई, इब्ने माजा ने और इसी तरह से इब्ने हिब्बान और हाकिम ने रिवायत किया है। इसमें आपने क्या बताया, अल्लाह ने जो भी बीमारी डाली है अल्लाह ने उसका इलाज रखा है। अलिमहु मन अलिमा व जहिलहु मन जहिला, जिसने उस इलाज को जाना जाना, जिसने नहीं जाना नहीं जाना। कभी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई करते हैं, रिएक्शन हो जाता है दूसरी, और फीस भी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करते हैं, आसानी से होता है, बोलते ये खाओ और जाओ, आदमी खा लेता है और दो दिन में अच्छा होता है। दो साल से इलाज कर रहा था और दो दिन में इलाज हो गया, क्यों, वहां की दवा मुनासिब नहीं हो रही थी, यहाँ की दवा मुनासिब हुई, दवा वहां नहीं थी यहाँ थी। तो नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, यहां नहीं तो वहां, आज नहीं तो कल।
تو اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کا علاج دنیا میں ہے. کوشش کرتے رہنا چاہیے, ہمت نہیں ہارنا چاہیے, اور یعنی کوشش اللہ تعالیٰ چاہے تو کامیاب کرتا ہے. اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بول دیتا ہے اب نہیں, اب انکار نہیں ہو سکتا. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک دم ٹرمینل کوئی ال ہوتا ہے, کینسر کا ایک دم تھرڈ سٹیج میں ہوتا ہے. اب پیشنٹ کو بھی معلوم ہوتا ہے, گھر والوں کو بھی معلوم ہوتا ہے, ڈاکٹر بولتا ہے آپ کوئی پرہیز نہیں ہے, جو مانگے وہ کھلاؤ, یہ کچھ دن کے مہمان ہیں, لیکن تکلیف ان کو ہوگی, تکلیف ان کو ہوگی. ایسے بھی بیمار ہوتے ہیں کہ اب ان کو بستر پہ ہی رہنا ہے, اس کے بعد ان کو دفن کرنا ہے, اور کچھ نہیں ہے, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ایسی کوئی دوا نہیں ہے, کہ ان کی اتنی کمزور کنڈیشن ہے, ان کو دوا دیں گے تو ریئیکشن ہو جائے گا, باڈی اس کی متحمل نہیں ہے. ایسے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں, وہ کیا کرے, ان کا علاج ہے نہیں, ان کا علاج ہے. اب ایسا جو آدمی ہوتا ہے وہ کیا کرے, جس کو معلوم ہو کہ اب میرا وقت ہے, اب علاج نہیں ہے, جس میں سکت نہیں ہے, اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے لیکن عام طور سے عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسا آدمی اس سچویشن کو کیسے ڈیل کرے؟ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے موت تک, کب تک, یہ جو تکلیف ہے, یہ جو پریشانی ہے, یہ جو بستر ہے, یہ جو دوائیں ہیں, یہ کب تک ہے, موت تک ہے. موت کے بعد جنت میں بیمار نہیں ہے, کہ جنت میں بیمار ہے, جنت میں ہاسپٹل میں جا رہا دو کچھ تو دوا, جنت میں بیماری نہیں ہے, جنت میں لنگڑا پن نہیں ہے, جنت میں کمزوری نہیں ہے, جنت میں چھینکنا کھانسنا تھوکنا کھکارنا کچھ نہیں ہے. وہاں پر ایک دم صحت مند آدمی رہے گا, اس کی بڑھاپا بھی دنیا میں تھا تو جنت میں کتنے سال کا ہوگا, 33 سال کے آس پاس ہوگا, 33, ایک دم جوان, ایک دم اوکے. وہاں پر ایسا جنت میں ہوگا, صحت مند, نہ اس کو پیشاب آئے گا, نہ پاخانہ آئے گا, نہ اس کو بلغم آئے گا, سردی زکام بھی نہیں اس کو, باقی بیماریاں تو بہت دور کی بات, زکام بھی نہیں ہوگا اس کو, ایک دم ٹھیک ٹھاک ہوگا. وہ آدمی جس کو ڈاکٹر بول چکا ہے آپ بچنے والے نہیں ہو, وہ آدمی سوچے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, دنیا میں تکلیف تھوڑی ہے, چار دن کی زندگی ہے, انشاءاللہ امید اور ایمان کے ساتھ اللہ سے راضی ہو کے یہاں سے جاؤں گا, چار دن کی تکلیف اس کے بعد جنت ہے. اس آدمی کے لیے کیا ہوگا, انتظار آسان, وہ جیسے جیسے موت قریب آئے گی اس کو خوشی بڑھے گی. صحیح, ایک آدمی اس طرح سے اپنے ذہن کو ایسے حالات میں بنا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر هذه من لذات, لذتوں کو ڈھانے والی موت اس کو خوب یاد کرو. کیوں, فما ذکره عبد قط وهو في ضيق الا وسعه عليه, جو بھی بندہ تنگی اور مصیبت اور پریشانی کی حالت میں موت کو یاد کرتا ہے, موت اس کے لیے حالت کو کھول دیتی ہے, سچویشن اس کے لیے کیا کر دیتی ہے, اوپن کر دیتی ہے, اس کی تنگی ختم ہو جاتی ہے, معاملہ ہلکا لگنے لگتا ہے. اور ولا ذکر ہوا ہوا فی ساعت الا ضیقه علی, اور جو آدمی راحت اور آسانی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے تھوڑی تنگی پیدا ہو جاتی ہے, ٹینشن بڑھ جاتا ہے, فکر پیدا ہوتی ہے. تو جو مصیبت میں موت کو یاد کرتا ہے کب تک چلے گئے, موت تک, ہمیشہ زندہ نہیں رہنا, اچھا ہوا. ایک پیشنٹ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ بہت سیریسلی بیمار ہو اور آپ کبھی اچھے نہیں ہوگے اور موت بھی نہیں آپ کو, بتائیے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے, کیا آپ کو موت نہیں, لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ اگرچہ میں اتنا بیمار ہوں لیکن موت ہے, یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے, چار دن رہے گا, ایک دن موت آئے گی, اس سے نکل جاؤں گا میں. تو جو آدمی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے وہ آدمی یہ سوچے بھائی یہ ساری مصیبتیں, یہ سارے فتنے, یہ آزمائشیں, یہ بیماریاں اور یہ ساری تکلیفیں کب تک, موت تک, قیامت تک نہیں رہنا مجھ کو یہاں پہ, موت آئی یہاں سے چھٹی ہے. تو جو آدمی یہ جانتا ہے اس کے لیے موت بھی راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایسا مریض, ایسا انسان, ایسا پریشان انسان ایسے وقت میں سوچے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت بھی رکھی ہے تاکہ دنیا کی جنجال سے, مصیبتوں سے آدمی نکل جائے. موت ایک دروازہ ہے جو دنیا کے پریشان حال انسان کو, نیک انسان کو یہاں سے نکال کے جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیتا ہے. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا سجن المؤمن, دنیا مومن کے لیے کیا ہے, قید خانہ ہے, اس کو لگتا کب یہاں سے نکلتا, کب یہاں سے نکلتا, کب یہاں سے نکلتا, یہ قید خانہ ہے. مومن کے لیے موت سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے, कि यहां हमेशा नहीं रहना है, ये फितने फसाद गुना शैतान नफ ये वो जुल्म ज्यादती यहां पर फितने ये फिरका वो फिरका, वो सोचता है कब तक, मांगता है मौत है अच्छा हो चलो कितना 60 साल 50 साल उससे पहले भी जा सकते हैं, तो ये हमेशा रहना नहीं यहां पर झंझट में हमेशा नहीं रहना है, एक दिन यहां से निकलना है। तो वो मौत का तसव्वुर उस बीमार के लिए उस परेशान हाल के लिए सुकून और राहत का जरिया बन जाता है। तो ऐसे आदमी को मौत को याद करना चाहिए, वो तौबा का भी जरिया बनेगा और सुकून का भी जरिया बनेगा। जब मौत को याद करेगा तो मौत के बाद की जिंदगी के लिए अल्लाह से दुआ भी करेगा और इसी के साथ साथ उसको सुकून भी मिलेगा। ये हुआ बीमार के एतबार से। नंबर 3, माजी के तजर्बात और गम। ये इतना बड़ा मौजू है कि इसमें कितना बात करें, कितना आदमी बताया, इस्लाम ने कितना गाइड किया। और ये दुनिया का आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेस। लोगों को स्ट्रेस की स्पेलिंग मालूम नहीं होती लेकिन स्ट्रेस होता है। हर आदमी बहुत टेंशन। अब दो आदमी दवाखाने बैठे, क्या आपको टेंशन है? बोले बहुत टेंशन, इसको है, आपको भी है, सबको है। डॉक्टर साहब को नहीं होगा टेंशन, है ना? डॉक्टर को ज्यादा टेंशन है, डॉक्टर को टेंशन, पेशेंट को टेंशन, बॉस को टेंशन, नौकर को टेंशन, सबको टेंशन, सब अटेंशन है यहाँ पे, कोई फ्री नहीं है। एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत। ऐसा मौजू है ये कि हर आदमी का मौजू है, ये सिर्फ मुसलमान का नहीं, गैर मुस्लिम का भी। और आप देखिए दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं मिल रही कि सारे टेंशन क्या हो जाएं, काफूर हो जाएं, नहीं मिल रही ऐसी कोई दवाई। क्यों? इसलिए कि इसके लिए वो दवाई नहीं है जो खा के आदमी का टेंशन दूर हो जाए, खा के आदमी का गम खत्म हो जाए, ऐसी दवा नहीं है। ऐसी दवा दुनिया में कोई नहीं है सिवाय दीन के और दीनी सोच के, सिवाय ईमान और यकीन और उम्मीद और अल्लाह से ताल्लुक के। और कोई चीज नहीं है जो इंसान को इन चीजों से डील करना सिखाए, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में। लिहाजा ये तीसरी चीज देखी क्या है, गम और दुख आदमी को दुनिया में लगा हुआ है, उससे आप बिल्कुल उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, लेकिन आप उससे डिलीट नहीं कर सकते, डील कर सकते हो। आप ऐसा हो कि आपको गम ही ना हो तो आप इंसान ही नहीं है फिर, आपको गम नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। इंसान है तो गम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बच्चा गोद में दम तोड़ रहा है और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अल्लाह ने इंसान के दिल को ऐसा बनाया है, उसको खुशी भी होगी और गम भी होगा, उसको फिक्र भी होगी और चैन भी आएगा, ऐसा होगा। लेकिन गम, इतना गम कि चक्कर आके गिरा, जब भी होशियार फिर गिर रहा है। बाज घरों में क्या होता है, किसी की मौत हो गई, अब बेटी आई देखते ही इतनी भीड़ देगी, चक्कर आके गिर गई, फिर अंदर लेके गया उसको, फिर उठी अबू, फिर चक्कर आके गिर गई। आप क्यों टूट रहे इतना? इन्हें ऐसा हिम्मत नहीं होती आदमी के अंदर। किसी आदमी को कल के प्रॉब्लम या पिछले गम की वजह से मेरा घर बह के चला गया या फुला चीज हो गई, औलाद की वफात हो गई, आदमी एकदम टूट जाता है। बच्चा यहां पर एक्सीडेंट उसका हो गया, उसको दवाखाने में दाखिल किया, बाप को मालूम पड़ा, बाप को हार्ट अटैक आ गया, उसको दवाखाने में अलग है। अब बीवी सोच रही है बच्चे के पास जाऊं कि बाप शोहर के पास जाऊं। आदमी मुसीबत में इतना ज्यादा उससे उसका असर ले लेता है कि एक बड़ी मुसीबत पैदा हो जाती है। इस्लाम बताता है कि नहीं, उसको डील करना सीखो। दुनिया में आएगा, दुनिया में फिक्र आएगी, दुनिया में परेशानी आएगी, दुनिया में गम तुमको झेलने पड़ेंगे, उसको डील करो, उसके साथ जीना सीखो। कैसा उसके साथ भी कैसा खुश रहे आदमी, ये इस्लाम सिखाने के लिए आया है, ये सिखाने के लिए इस्लाम आया है। तो एक चीज क्या है जो आदमी की जिंदगी को परेशान करती है, उसके गम। कैसा? मैं पढ़ा लिखा होता तो चपरासी नहीं होता, बाहर डंडा लेके खड़ा है और वही सोच रहा है कि साहब आते जाते उसको सैल्यूट करना पड़ता है। एक ऐसा अगर मैं पढ़ लिख के कुछ बनता तो लोग मुझको सैल्यूट करते, तो सुबह से शाम तक ड्यूटी में क्या हो रहा है, हाथ दिल पूरा एकदम डाउन, एकदम गम गम गम। तनख्वाह जब भी ले रहा है हाथ में और दूसरे को देख रहा है उसकी ज्यादा और इसकी कम, दिल में गम। तो आदमी माजी का सोच सोच के भी अपने हाल को भिगोता है अपने आंसुओं से कि मैंने ऐसा, काश कि मेरा ऐसा होता, तो माजी के गम होते। कभी ऐसा होता है किसी के घर में किसी की वफात हो जाती है, जवान बच्चा किसी का एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, अब जब भी घर में खुशी का वक्त आता है आंसू भी आ जाते हैं, वो भी याद है आज बेटा होता हमारा तो कितना अच्छा होता, बेटी की शादी हो रही बेटा होता तो कितना अच्छा होता, आज फुला चीज है छोटा भाई उसका आज देखो जॉब उसको मिला है, बड़ा भाई होता तो कितना खुश होता है, या इसका बच्चा है आज देखो पास हुआ, अब वो आज होते जिंदा होते तो कितना खुश होते। तो जब भी ऐसा होता है आदमी के दिल में गम उमड़ आता है। तो आदमी के दिल में माजी के जो वाकयात हुए हैं, जो उसके साथ दुख हुआ है, उसका घर सैलाब में बह के चला गया, उसकी जायदाद तबाह हो गई, घर जल गया, किसी का मिसाल के तौर पर बहुत सारे फसादात होते हैं, किसी का कत्ल हो गया, किसी के घर वालों की इज्जत खराब की गई, किसी का घर तबाह किया गया, बहुत सारे वाकयात जिंदगी में होते हैं, वो इंसान पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, वो साया हमेशा उसके आंगन में रहता है, वो हमेशा उसके लिए याद दहानी कराने वाली चीज बाकी रहता है, वो जख्म हमेशा उसके दिल पर रहता है। जब भी वो चीज उसके साथ कुछ होता है, एक गम दूसरे गमों को ट्रिगर करता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आदमी को जब एक गम आता है तो वो गम पिछले सारे गम ट्रिगर करता है, बचपन तक जितने भी होते हैं सारे गम उमड़ आते हैं उसके अंदर, सब गम एक साथ आ जाते हैं उसको, क्योंकि एक गम सारे गम आदमी को याद दिलाता है, एक कैफियत सारी कैफियतें आदमी के दिल में पैदा करती है। तो अब ऐसे ऐसे गमों में, ऐसी परेशानी में आदमी क्या करे। एक आदमी सोच, मिसाल के तौर पर एक आदमी है, बच्चा है या कोई बड़ा है घर का, उसको अब उसने फोन किया, उसको घर पे जल दिया, यहाँ परेशानी है, इसको आने में देर हो गई, उसको दवाखाने में नहीं ले जा पाया वो, और रास्ते में दम तोड़ दिया उसने, उसको याद रहता हमेशा सोच काश कि मैं जल्दी आता, काश कि मैं जल्दी आता, काश के ट्रैफिक जाम नहीं होता तो मेरे बाप की मौत नहीं होती, होता है ना ऐसा, अक्सर लोग सोचते हैं ऐसा, काश कि मैं उस दिन छुट्टी पे होता तो मैं अपने बच्चे के लिए घर में मौजूद होता, मेरा बच्चा दौड़ते दौड़ते बाहर गया और गाड़ी के नीचे आ गया, काश कि ऐसा मैं ऐसा करता, काश कि मैंने अपने बच्चे को बाहर जाने से रोका होता। आदमी ये सोच सोच के अपने को दोष देता है, काश कि मैंने सही डिसीजन लिया होता, काश कि मैंने डॉक्टर से कहा होता कि ठीक है आप करो ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं करे इस वजह से बच्चा मर गया, काश कि मैंने डॉक्टर को बोला होता। आदमी अपनी जिंदगी को, अपने आप को जिंदगी में अपनी पीठ पर कोड़े लगाता है जिंदगी भर, काश कि मैंने ऐसा किया होता। ये इसकी जिंदगी को जाने वाला नहीं आता है, लेकिन वो उसकी सजा अपने आप को खुद ही देता रहता है। घर के सब लोग जो हैं, जो हो चुका है घर के अंदर गम का मामला, उसको हर साल हर दिन हर महीना हर रोज हर वक्त उसकी तजदीद करते रहते हैं, कुछ होता नहीं, हालात बदलते नहीं है, लेकिन आदमी अपने आप को ये खामखा की सजा देता है, काश कि मैंने ऐसा किया होता। इस्लाम बताता है कि आदमी अपनी कोशिश जब कर डाले उसके बाद में आदमी सोचे जो अल्लाह चाहता है होता है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, वो अगर मगर और काश करता ना रहे, वो अल्लाह पर छोड़ दे, अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए, अपनी कोशिश कर देने के बाद वो अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए, और फिर असबाब की बुनियाद पर के काश ऐसा होता, इस तरह की सोचना पैदा करे, वरना ऐसा आदमी कभी सुकून से नहीं रहेगा। दुनिया की नाकामियां, काश मैंने ऐसा किया होता तो ये नुकसान नहीं होता, अगर ऐसा सोचेगा हमेशा दिल में गम आता रहेगा, वो सोचे होना था हो गया खलास अब आगे क्या। ये आदमी बहादुर आदमी है, हो गया ना हो गया, कल हुआ ना हाँ कल गया, कल आज का क्या, आज का मसला आज बाकी है, छोड़ो उसको पीछे चलो आगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुमिनुल कवी खैरुन व अहब्बु इलल्लाह मिनल मुमिनिद दईफ व फी कुल्लिन खैर। एक मजबूत मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है, मजबूत मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है, खैर व अहब इलल्लाह ज्यादा बेहतर है, अल्लाह को ज्यादा प्यारा है कौन, जो एकदम मजबूत आदमी हो, कच्चा नहीं, जरा जरा सी मुसीबत में फिसल जाता, इसमें हेल्थ की बात नहीं हो रही है, शेख उस्मीन कहते हैं कि इसको जिम में लगाना सही नहीं है, बहुत सारे क्या बोलते हैं अरे खाओ पियो थोड़ा मजबूत हो जाओ, क्योंकि अल्लाह को मजबूत मोमिन पसंद है, ये वो मजबूत नहीं है, क्योंकि आगे की बात बता रही कौन सा मजबूत, इसलिए कि अच्छे खच्चे हट्टे कट्टे होते हैं, मुसीबत आती बैठ जाते हैं, अच्छे दुबले पतले होते खड़े हो जाते हैं, ये मोमिन पसंद है अल्लाह को, जो मजबूत हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी रूहानी एतबार से एथिकली मजबूत हो, एकदम मुसीबत में खड़ा होने वाला हो बैठने वाला नहीं हो। इसलिए आप फरमाते हैं कि मजबूत मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है और ज्यादा बेहतर है, और ऐसा नहीं कि वो बुरा होता है कमजोर, जो मुसीबत में गिर जाए टूट जाए बुरा नहीं है, वो कमजोर है, कमजोर है वो, इसलिए कि आपने फरमाया वो फी कुल्लिन खैर, और हर एक में खैर होती है। कमजोर मोमिन जो होता है मुसीबत में परेशान हो जाता है, वो भी अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है, वो उसकी कमजोरी है, वो क्या करेगा बेचारा, हल्के दिल का एकदम। आप फरमाते इहरिस अला मा यनफउक वस्तईन बिल्लाह वला ताजस, ऐसी चीज की तमन्ना कर जिसमें तेरे लिए भलाई है, ऐसी चीज की हिर्स कर जो तेरे लिए खैर है, जो तुझको नफा दे। वस्तईन बिल्लाह, और अल्लाह से मदद चाह। वला ताजस, और कम हिम्मत मत बन, हिम्मत मत हार, आजिज मत हो, यानी मुझको ये चाहिए, मुझको पास होना है, मुझको जवाब चाहिए, मुझको शिफा चाहिए, अच्छी चीज की तमन्ना कर और अल्लाह से मदद मांग। ए अल्लाह मेरी मदद कर, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, ए अल्लाह मेरी मदद कर, मैं शिफा के लिए जा रहा हूं, बीमार हूं, मैं दवा के लिए जा रहा हूं, ए अल्लाह मेरी मदद कर। वस्तईन बिल्लाह वला ताजस, अरे क्या कुछ नहीं होता, कुछ भी किया तो नहीं होता, हिम्मत मत हार, कितना भी ट्राई करे तो कुछ भी नहीं होता, ट्राई ट्राई करो और एंड में क्राई करो, नहीं। वस्तईन बिल्लाह वला ताजस, अल्लाह से मदद मांग, आजिज मत बन, कुछ नहीं होता ऐसा मत बोल, हिम्मत मत हार, जो चाहिए उसकी तमन्ना कर और अल्लाह से मदद मांग, और वला ताजस, आजिज मत आ, हिम्मत मत हार, कुछ नहीं होता ऐसा मत समझ। वो इन असाबक शैउन फला तकुल लौ अन्नी फअलतु कान कदा व कदा, और सब कुछ करने के बाद भी अगर लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो फिर ऐसा मत बोल काश कि मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता, ऐसा मत करते बैठे। सब कुछ तेरे ट्राई करने के बाद फिर भी अगर तू नाकाम हो, फिर भी तेरा नुकसान हो जाए, फिर भी तू कामयाब ना हो सके, तो फिर ऐसा मत बोल काश मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, काश कि मैं ऐसा करता तो, अगर मैं ऐसा करता तो मगर हो जाता, अगर मगर के चक्कर में मत पड़। क्यों? आप फरमाते हैं वलाकिन कुल कदरुल्लाह वमा शा फअल, अल्लाह की तकदीर है, अल्लाह ने जो चाहा किया, अल्लाह की तकदीर है, अल्लाह का अंदाजा, अल्लाह का फैसला है, अल्लाह ने जो चाहा किया। क्यों? आप फरमाते हो फइन्ना लौ तफ्तहु तफ्तहु अमल शैतान, इसलिए कि अगर मगर करना शैतान की चालों के लिए, शैतान के अमल का दरवाजा खोलता है। अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, यानी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ होता, यानी तू अल्लाह की, अल्लाह के फैसले से रास्ता निकालने की तेरी कैपेसिटी थी, अगर मैंने ऐसा किया होता तो अल्लाह जो चाहता नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता नहीं, तो ऐसा भी जाता तो वैसा होता, ऐसा भी अल्लाह ने फैसला कर दिया ऐसा होना चाहिए, तो तू अगर मगर में मत पड़। क्योंकि बहुत सारे लोग जो लॉसेस हो जाते हैं, डील फेल हो गई, घर पे आके बैठा और बीवी भी देख रही, इनसे बात करने को नहीं चाहिए, अभी सिचुएशन थोड़ी गंभीर है, चाय लाऊं पानी लाऊं वो भी पूछने को डर रही हो। क्यों? इसलिए कि हजरत, हाँ हजरत एकदम अभी चेहरा एकदम तमतमा रहा है, और बच्चे भी क्या है, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, खेलने वाले बच्चे भी पढ़ने को बैठ गए, वो भी पढ़ रहे, उल्टी किताब पकड़ के ही सही है लेकिन पढ़ रहे। अब्बू आया घर में और अब्बू का सिचुएशन जरा टेंशन वाली दिख रही है, और वो सोच रहा काश मैं आज ऐसा करता, काश मैंने ऐसी बात की होती, काश मैं ऐसा करता तो ऐसे नहीं होता। हालात बदलते हैं उससे, नहीं बदलते। काश मैं ये दवा देता तो अच्छा हो जाता, काश मैं ऐसा करता तो, काश मैंने रिश्ते में ऐसी बात की होती तो रिश्ता कैंसिल नहीं होता, है ना। आदमी सोच काश कि मैं ऐसा करता, थोड़ा और हैंडसम बन के जाता, काश कि मैं इंग्लिश में बात करता अच्छा, काश मैं डिग्री भी, मेरा बायोडाटा भी लेके जाता रिश्ता, लड़की को भी देखो देखो जल्दी देखो इसको, काश क्या ऐसा होता, काश कि हम बगैर पर्दे की बच्ची को लाते सामने, काश क्या हम ऐसा करते, काश वाश कुछ नहीं है, काश से कुछ होता नहीं है। लिहाजा कोई आदमी जब नुकसान हो जाए उसको कुछ, वो काश में न पड़े, आगे बढ़ जाए। इसलिए आपने क्या फरमाया, वस्तईन बिल्लाह वला ताजस, अल्लाह से मदद चाह, आजिज मत बन, फिर भी अगर कुछ हो जाए तो क्या कहे, नहीं हुआ ना, अल्लाह ने नहीं करना था, नहीं हुआ, अब होता गया, नहीं हुआ नहीं हुआ गया, नहीं हुआ हो गया, खत्म हो गया, अल्लाह ने चाहा ऐसा हो वैसा हुआ, हम उसको बदल सकते थे? नहीं। तो आदमी क्या होता है, दिल हल्का होता है। एक आदमी पेशेंट के लिए लेके गया, लेट पहुंचा दवाखाने में, और अगर वो ये सोचे कि मेरी वजह से ये मरा है, जिंदगी भर दुखी रहेगा। लेकिन वो ये सोचे, भाई मैंने मेरी कोशिश की, अब अल्लाह ने इसकी जिंदगी नहीं लिखी थी, मौत से पहले तो नहीं मरा, नहीं मौत थी उसकी आगे रमजान में, और मौत से पहले ये मर गया। ऐसा हुआ, अल्लाह ने जब उसकी मौत लिखी थी तभी मरेगा वो, तो ये मैंने मौत नहीं दी उसको, अल्लाह का फरिश्ता आके लेके गया उसको। तो ये होना था, ये होना था, ऐसा हुआ, अल्लाह की तरफ से हुआ है। तो उसका दिल क्या होगा, थोड़ा हल्का होगा, इसमें मेरा कसूर नहीं उसको महसूस होगा। बहुत सी जिंदगियां गमों की वजह से तबाह हो जाती हैं, अपने आप को जिम्मेदार करार देने की वजह से, या फुला को जिम्मेदार। घर में ऐसा बेचारा कोई होता है, सब उसको वो निगाह से देखते हैं, इसकी वजह से हुआ। ये बच्चा अगर इस बच्चे को नहीं ले जाता अगर, तो इसका एक्सीडेंट नहीं होता है। बाद वक्त ऐसा होता है बेचारे की, उसकी जिंदगी हमेशा गम में चलता है वो। जब भी लोग उसको देखते, उसको निगाह मिला के देखता, उसको लगता है मुझको इस निगाह से देख रहे हैं सब लोग, मैं जिम्मेदार हूं इसकी, इसके अपाहिज होने का। ऐसा नहीं है, जो होना है अल्लाह की तरफ से हुआ। अगर ये सोचेंगे तो आदमी का गम हल्का हो जाता है। इसी तरह से जो नुकसान आदमी का माजी में हुआ हो, आदमी ये सोचे कि इस नुकसान में हो सकता है मेरा कोई फायदा हो। और अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी का एक नुकसान एक फायदे की सीढ़ी बनता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, फअसा अन तकरहु शैअन वयजअल अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। और बहुत मुमकिन है कि किसी चीज को तुम नापसंद करो, लेकिन वो चीज ऐसी हो कि अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत भलाई रखी हो। तुमको पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भलाई उसमें है, ऐसा हो सकता है। तुम चाहते हो कि ऐसा नहीं हो, लेकिन वो होने से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। एक चीज हम पसंद नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए समझ रहे हैं, ऐसा हुआ बुरा हुआ समझ रहे हैं, लेकिन उस बुरे होने में ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ा फायदा इंसान का। मिसाल के तौर पर आप देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों ने क्या किया, याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, जरा हमारे भाई को हम लेके जाते, जरा खेलते, सौतेले भाई हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत चहीते बेटे और बहुत ज्यादा मोहब्बत, तो जिनको मोहब्बत कम मिल रही है वो क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है हमको कम मिल रही है, तो क्या कर रहे हैं, अभी कुछ तो इसका करेंगे, ले जाके इसको, काम तमाम। ले जाके उन्होंने क्या किया, मार डाले या क्या करें, ले जाके कहा ठीक है काम करो, कुएं में डाल दो, कुएं में डाल दो, कुएं में डाल दिए जिसमें पानी नहीं, और डाल के आ गए और कपड़े उनके ले लिए, छीन लिए, और उसको खून बीन झूठा लगा के क्या किया, बाप से कहा भेड़िया उठा के लेके गया भाई को, भेड़िया उठा के लेके गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां आए, कुएं में। अब बुरा हुआ कि अच्छा हुआ, कोई भी आदमी समझदार आदमी क्या कहेगा, प्रेजेंट के एतबार से तो बुरा हुआ, फ्यूचर के एतबार से कैसा है वो। देखिए, एक बुरा आप उसको दो पर्सपेक्टिव में देख सकते हो, उस वाकई के एतबार से वो बुरा है कि अच्छा है, बुरा है, किसी को कुएं में क्यों डाले भाई कोई, और कुएं में आया बहुत अच्छा हुआ कुएं में आया, ऐसा कोई बोलता नहीं। लेकिन वो फ्यूचर के एतबार से उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा होने के बावजूद। अब एक काफिला आया, उन्होंने पानी के लिए देखा, अरे इसमें तो पानी नहीं, इसमें तो बच्चा है, इतना खूबसूरत बच्चा, निकालो बाहर। एक फ्री का गुलाम मिला अपने को, चलो उसको लेके गए वो लोग, बाजार में रखा, कुछ वैल्यू आएगी, बेच दिया उसको, बाजार में बिक रहा है, इतना अच्छा बच्चा, अल्लाह का नबी बनने वाला है, अल्लाह का नबी है, बाजार में और ज्यादा वैल्यू भी नहीं आई, बिक गए। कहां गए, बिक के अजीज मिस्र के घर में गुलाम, औरत ने कहा लो इसको रखेंगे अपने घर में, काम आएगा आपने, ये बच्चा ही बना, बेटा ही बना लेंगे इसको, घर में रह रहे रह रहे, जब नौजवान हुए अच्छे खूबसूरत, एकदम खूबसूरत नौजवान। अब उसकी बीवी का दिल इन पे आया, शुरुआत में तो बेटा बनाने की बात हुई थी, अब उसका दिल फिसल गया, अजीज मिस्र की बीवी का दिल इन पर आ गया। अब उसने क्या किया, गुनाह की दावत दी, बोले नहीं महाद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, क्या काम है ये, गलत काम है ये, दौड़े पीछे, वो दौड़ी कितनी आप देखिए, पीछे दौड़ी भागे। अब उसके बाद उसने जब सब पकड़े गए, मामला ये हुआ, और उसने अपने आप को छुपाने के लिए तोहमत किस पे डाल दी, इन पे डाल दी, ये जो भी लंबा चौड़ा जो भी मामला होना था हुआ, उसके बाद में कहां डाल दिया गया इनको, जेल में। बाप से महरूम होके कुएं में, कुएं से बाजार में बिके, इतना इंसल्ट, बिक रहे हैं। नबी का बेटा बिक रहा और कम कीमत में बिक रहा, फिर यहां आए गुलाम के तौर पर, और गुलाम के तौर पर आने के बाद फिर एक झूठी तोहमत भी, और नेक आदमी पे तोहमत, प्रोपेगेंडा झूठा, और उसकी सजा भी कहां, जेल में गए, जेल में। अब सोचिए फेलियर 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 दिखाई दे रहा, मुसीबत मुसीबत मुसीबत, लेकिन नबी थे वो, जानते थे अल्लाह अल्लाह ने रखा है ना, कुछ तो इसमें होगा। बाप वहां रो रो के नाबीना हो गए। अब इसके बाद दो कैदी आए जेल में और साथ में उठना बैठना, इन्होंने दावत दी, उन्होंने ख्वाब बताया, हमने ये ख्वाब देखा, हमने ये ख्वाब देखा, उन्होंने उनकी ताबीर बताई। एक तो उसको सजा दे दी गई, दूसरा किसी बड़े का खास बना, बादशाह का खास बना। उस आदमी ने बादशाह को ख्वाब दिया, अल्लाह ने सात गायें ऐसी सात गायें ऐसी, भी इतना लंबा होकर पूरा एक दर्ज है वो, तो उसके ख्वाब में उसने लोगों को बुलाया, मैंने इसे ख्वाब देखा, क्या है, बड़े बड़े एक से एक अकलमंद विद्वान आए उधर, उन्हें कहा ये खाली ख्वाब है, कुछ नहीं है, ऐसा ऐसे आते रहते लोगों को ख्वाब। उसने कहा नहीं देखो, उसने कहा अच्छा मुझको एक आदमी याद आया, उसने मेरे ख्वाब की ताबीर बयान की थी और बराबर जैसा बताया वैसा हुआ, मेरे साथी को ऐसा हुआ और मेरा ऐसा हुआ, बराबर बताता हुआ। अब आए इनसे ख्वाब पूछा, इन्होंने अपनी शर्तें रखी, मुझको ऐसा करो, मुझको क्या करो, उन्होंने शर्तें अपनी रखी, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, जमीन के खजानों पर मुझको जिम्मेदार बनाओ, जमीन के खजानों पर मुझको, जमीन के खजानों पर मुझको जिम्मेदार बनाओ, तुम्हारी जो भी खजाने उन पर। वहां से निकाला गया और उन्होंने जो ताबीर बताई वो बिल्कुल जैसा उन्होंने बताया वैसा ही निकला, और क्या हुए, बादशाह के एकदम खास पूरे हाथ में जितनी भी, यानी जितना भी उगाया गल्ला वगैरह और सब, जितनी भी प्रॉपर्टी बादशाह की है, जितनी हुकूमत में जितना भी है रिसोर्सेज, उस वो सारे रिसोर्सेज के जिम्मेदार कौन बने, ये बने। जो बच्चा कम कीमत में बिका था वो इतना बड़ा बन गया कि पूरी पूरी हुकूमत की सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आ गई। नाकामी से नाकामी, नाकामी से नाकामी, तकलीफ से तकलीफ, और अचानक एकदम ऐसा जायंट लीप जिसको आप कहें कि एकदम बादशाह के खास, ये कैसा हुआ? अगर कुएं में नहीं गिरते तो बिकते नहीं, बिके नहीं होते तो अजीज मिस्र के घर में जाते नहीं, तोहमत अगर नहीं रखती जेल में नहीं जाते तो ख्वाब वाला मिलता नहीं, ख्वाब नहीं गिरता उसको ख्वाब वो बताता नहीं तो फिर बादशाह को मालूम होता नहीं, तो जेल में नहीं जाते तो मालूम कैसे पड़ता कौन किधर है। तो एक मुसीबत से दूसरी, दूसरी से तीसरी, बाद औकात ऐसा होता है कि दुनिया में एक नाकामी, दूसरी नाकामी, तीसरी नाकामी, लेकिन वो नाकामियां, वो नुकसान किसी न किसी बड़े फायदे की तरफ ले जाते, आदमी नहीं समझता इसको। इसी महीने में एक भाई हमारे बताया कि यूपी से टिकट कुछ लोगों का बन रहा था गाड़ी का, अब कुछ लोगों को वहां के सरपंच ने क्या किया, कहा उनका बना हुआ टिकट है, कहा तुम दो मत जाओ, तुम लोग तुम्हारा टिकट क्या है, हमको जाना है, बोले नहीं जाना है, उनकी जगह दूसरे उसके कोई खास है रिश्तेदार वो जाएंगे, तुम जाओ। उनका टिकट कैंसिल हुआ, बना हुआ टिकट उनके नाम पर है, बस उनको हटा के उनको कितना गम हुआ होगा, अब उनकी जगह दूसरों को भेज दिया। वो बस आई, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और जो उस तरफ बैठे हुए थे सब के सब उस एक्सीडेंट में मारे गए, उनकी मौत हो गई उसमें, और ये जो दो कैंसिल हो गए थे वो अपने गांव में आज भी मौजूद हैं। उनका टिकट कैंसिल हुआ, उस वक्त उनको क्या हुआ, गम हुआ ना, इतनी खुशी हम जा रहे हैं देखो टिकट कैंसिल हो गया, लेकिन अब क्या हो रहा उनको, अल्लाह का एहसान है टिकट हमारा कैंसिल हुआ। तो एक तकलीफ एक बड़ी राहत का जरिया भी बन सकती है, लेकिन चूंकि आदमी अपने प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ के नहीं देखता है, इस वजह से उसकी वजह से क्या होता है, गमगीन होता है। जब आदमी के पास होप हो, उम्मीद हो, आज ऐसी तकलीफ है, हो सकता है इसमें कुछ फायदा हो, नहीं हो सकता, हो सकता है, जब यूसुफ अलैहि सलाम का हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। कितने लोग होते हैं ऐसे जिनकी जिंदगी में एक लॉस, एक रिश्ता बहुत जमा टूट गया, बहुत गम हुआ, बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा मामला था, अच्छा हुआ नहीं हुआ, या बाद में उससे अच्छा रिश्ता हुआ, उससे अच्छी दीनदार लड़की मिली, उससे अच्छा मामला हुआ, या उसकी बच्ची की वफात ही हो गई। तो एक आदमी सोचता है, आज में सोचता है, वो अपने कल की तरफ उसकी निगाह नहीं होती है। जब आदमी सोचे कि हो सकता है इसमें कोई अच्छा पहलू हो, तो आज की तकलीफ भी बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। मेरे ख्याल से वक्त मुकम्मल हो गया है, मौजू हमारा मुकम्मल तो नहीं हुआ है, लेकिन वक्त मुकम्मल हो गया है, इसमें मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह इस मौजू को हम एक कोर्स की शक्ल में मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों के मसाइल को हल फरमाए, हम में से जो भी मुसलमान परेशान है, दुनिया भर में जितने भी इंसान परेशान है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनके मसाइल को हल फरमाए। अकूल कौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम।